इदम् अब्रवीत् श्रीशुक उवाच इति वैरोचने वाक्यं धर्मयुक्तं सुनृतं निशम्य भगवान् प्रीता प्रतिनद्धेद इदं ब्रवीत् प्रतिनद्धे इदं ब्रवीत् श्रीशुक उवाच इति वैरोचने वाक्यं धर्मयुक्तं सुनृतम् निशम्य भगवान् प्रीता प्रतिनन्देत् इदं ब्रवीत् श्रीशुक उवाच इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं सुनृतम् निशम्य भगवान् प्रीता प्रतिनन्दन् इदं ब्रवीत् श्रीशुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार वैरोचने विरोचन के पुत्र ने विरोचन के पुत्र के वाक्यम शब्दों को धर्मयुक्तम धर्म से युक्त सह वह सुनृतम अत्यंत सुहावने निशम्य सुनकर भगवान भगवान वामन देव प्रीतः पूर्णतया प्रसन्न होकर प्रतिनंद उनको बधाई देकर इदम निम्नलिखित शब्द अब्रवीत कहे। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति अनुवाद तात्पर्य इसमें नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो ये परम प्रसन्न हुए क्योंकि बलि महाराज के ने धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप ही कहा था। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिरैमा पुरो विभो निरमाय सेते यदमूषु पुरुषं भोक्ते गुणांशोडशषोडशात्मकं शूलं कृषीष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेम च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको ऑफ कर दे क्योंकि एक तरफ से ही आ रहा है। हाँ जी, कल तक कहाँ तक कथा हो गई थी? कल कौन बता सकते हैं? भगवान को ब्लैंक चेक दे सकते हो, पत्नी को ब्लैंक चेक मत देना, नहीं तो कैकई का कथा मालूम है ना, दशरथ महाराज ब्लैंक चेक कैकई को दे दिए थे, गड़बड़ हो गया बाद में। तो भगवान को दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। एनीवे, सत्संग का व्याख्या करते हुए बताता हूं कि सत्संग जो है एक दो दीपक के जलाने के समान होता है। एक दीपक जब जलता है तो चारों तरफ प्रकाश लाता है, लेकिन उसके पेंदी में अंधेरा रहता है। कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा, उसके पेंदी में अंधेरा रहता है। एक दूसरा दीपक जब आता है तो इस दीपक के प्रकाश से इस दीपक का अंधेरा दूर हो जाता है, और इस दीपक के प्रकाश से इस दीपक का अंधेरा दूर हो जाता है, और यही कहलाता है सत्संग। तो कल मुझे बोलने में कुछ गड़बड़ी हो गया एक बात, तो वृंदावन चंद्र प्रभु बाद में हमको बताए, लेकिन मेरा प्राइड था कि मैं इनके बात को स्वीकार नहीं किया। फिर मैं अचार्य लोगों का कमेंट्री देखा तो वही बात था, वो भृगु कक्ष का बात था। तो मैंने कहा था कि भृगु कक्ष कच्छ जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, लेकिन वास्तव में वह कच्छ नहीं है बल्कि भरूच को भृगु कच्छ कहा जाता है। तो थोड़ा करेक्शन था। भरूच का मूंगफली आप लोग खाए हो कि नहीं? फेमस होता है। गुजरात थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जगह है, वहाँ लोग मैं गुजराती से मेरा शादी हुआ है तो मैं जानता हूँ कैसे कॉम्प्लिकेटेड लोग भी हैं, क्योंकि वहाँ मिर्चा भी डालते हैं और चीनी भी डालते हैं, दोनों डालते हैं, तब उनको पछता है ना। तो भृगु कक्ष मतलब समझा कच्छ, वही कच्छ, लेकिन उसका मतलब दूसरा ही कुछ हुआ। एनीवे, हरे कृष्णा। तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, भरूच को भृगु कच्छ कहा जाता है। यही सत्संग का फायदा, दो दीपक का, एक दूसरे के पेंदी तले अंधेरा को दूर करने का। तो जब भगवान वामन देव को ब्लैंक चेक मिल गया तो स्वाभाविक है हम लोग प्रचार करने जाते हैं, कोई चेक दे देता है तो कितने खुश होते हैं, और हम लोग उसका गुणगान भी करते हैं। और बलि महाराज के विषय में भगवान वामन देव बात करने जा रहे हैं, लेकिन जो भी बात कह रहे हैं यथार्थ सत्य बात है। जो भी बात आप कह रहे हैं, भगवान किसी का प्रशंसा व्यर्थ में नहीं करते हैं और किसी का निंदा भी नहीं करते हैं। वैसे ही साधुगण, साधु लोग भी किसी का व्यर्थ में प्रशंसा नहीं करते हैं और न तो किसी का निंदा करते हैं। ये परमहंस की गति है। ये प्रहलाद महाराज भगवान दत्तात्रेय से मिले, जो कि अवधूत के रूप में थे, तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप कैसे अपना जीवन यापन करते हो। तो वो सब बातें बता रहे थे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और उन्हीं बातों में उन्होंने यह भी बताया कि न तो मैं किसी का निंदा करता हूं और न किसी का स्तुति करता हूं, इसलिए कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता। तो कहना चाहिए बात, लेकिन सत्य बात कहना चाहिए, सत्य बात सुमधुर होता है। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुनृतम मतलब बहुत शुद्ध बात था, नृतम मतलब सत्य, और नृतम का मतलब होता है आनंद। सत्य जो है वो आनंदमय है, तो सुनृतम बिल्कुल सही सही बात, आनंदमयी बात कहे थे बलि महाराज। यहां पर बलि को डायरेक्टली न कहकर कहा गया है बैरोचने वाक्यम, विरोचन के पुत्र को बैरोचन कहा गया, जैसे वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है, वैसे ही विरोचन के पुत्र को बैरोचन कहा गया है। देखिए, जब भी पुत्र अच्छा काम करता है, संतान अच्छा काम करता है, तो पिता का नाम होता है, और जब भी कुछ खराब काम करता है तो भी पिता का नाम। कोई अच्छा काम किया, किसका बेटा है? फलाना का बेटा है। खराब काम किया, किसका बेटा है? उसका बेटा है। तो इस पूरे प्रसंग में दो बार ये शब्द आया हुआ है, बैरोचने बैरोचन, विरोचन का बेटा, ये दो बार ये शब्द आया हुआ है। एक अच्छा काम के लिए उन्होंने बलि महाराज को, बलि महाराज ने भगवान को देने के लिए ब्लैंक चेक दे दिया था, स्वीकार किया कि अब जो चाहिए मैं दूंगा, ये अच्छा काम था, इसके लिए बैरोचन शब्द आया हुआ है। और एक शुक्राचार्य बड़े गुस्सा में आकर के वहां भी बैरोचन शब्द कहे हैं, क्योंकि तूने बहुत खराब काम कर दिया, इस बामन को 3 पग देने के लिए कह दिया। तो खराब काम के लिए बाप का नाम लेकर कहा गया है। तो दोनों उदाहरण यहां पर इस अध्याय में देखा जाता है। तो बलि महाराज का जो वाक्य था, जो शैली था कहने का, जो भी कहे, कहते हैं धर्म युक्त, धर्म परायण था। क्योंकि जब भी कोई अतिथि अपने घर आता है तो उसे केवल देना चाहिए, उसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी इस बात को बताए लाइफ मेंबरशिप प्रीचरों के लिए कि जब भी कोई गेस्ट मंदिर आता है तो उसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगना है तो उसके घर जाकर के मांगो, मंदिर में मत मांगो, और आप जप मत कीजिए। दोनों का मतलब एक ही होता है, अटेंटिव होकर सुनिए। हैं तो वैसे ही कोई हमारे घर आए, उसको हमें देना चाहिए, बैठने के लिए आसन दें, पीने के लिए सुमधुर जल दें, सुभाषित वाणी दें, खाने पीने का व्यवस्था करें, जो चाहिए देना चाहिए। तो बलि महाराज वामन देव को देने का और सब देकर के देने का भी वचन दिए कि जो चाहिए मैं दूंगा। तो यह धर्म युक्त वाक्य था। निशम्य भगवान प्रीतः, निशम्य निशम्य मतलब सम्यक रूप से समझ कर करके, भगवान समझ गए कि जो बलि कह रहा है वो पूरा करेगा, इसलिए शब्द आया हुआ है निशम्य, सुन कर करके और समझ कर करके, कि यानी जो बलि कह रहा है सही में करेगा। वो कह रहा है कि जो चाहिए वो मांगिए मैं दूंगा और देगा भी, इसलिए शब्द आया हुआ है निशम्य भगवान प्रीतः, यानी मन में कुछ और बाहर कुछ और, तो वह शब्द निशम्य नहीं हो सकता है, वह वाक्य निशम्य नहीं हो सकता है। और निशम्य वाक्य जो है, वह वाक्य जो अंदर बाहर एक है, वह निशम्य वाक्य है, वह बड़ा सुमधुर होता है, जो सुनता है उसको अच्छा लगता है, भले ही वो खराब क्यों ना हो। ऐसा बात नहीं केवल देने का ही बात निसम्य है, नहीं देने का बात भी निसम्य है। यदि किसी के पास कुछ नहीं है और कह देगा कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं दूंगा, वो भी निसम्य कहलाएगा, क्योंकि सही में नहीं होना चाहिए। नहीं कि है और कह दे मैं नहीं दूंगा, तो निसम्य बात नहीं हुआ बल्कि वो कटु वाक्य हुआ। जो सुनने में अच्छा लगे अंदर बाहर हो, तो भगवत प्रीत ऐसी बात जो है सबको प्रसन्न करने वाली बात होती है। इसीलिए कहा जाता है जब भी हम बोले सत्य ही बोले, और सत्य वचन बड़ा प्रिय होता है। तो भगवान प्रसन्न होकर के बलि महाराज को बधाई देना शुरू किए, और वे बधाई के रूप में क्या कह रहे हैं, वो श्री भगवान उवाच बचह तव एतत् जनदेवः सुनृतम् कुलोचितम् धर्मजतः तस्करम् यस्य प्रमाणम् भृगवः साम्पराये पितामह कुलवृद्ध वसान्त। ये माला मेरे लिए बना गया, यहाँ के लिए बना गया है ना, नहीं तो भागवतम को रखते हैं, कोई बात नहीं। श्री भगवान उवाच, भगवान का अर्थ सर्व सामर्थ। पराशर मुनि के अनुसार भगवान उसे कहते हैं जिनमें छह ऐश्वर्य हो, और आप लोग भगवान की परिभाषा को कितने बार सुन लिए होंगे, तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सर्वसमर्थ भगवान कह रहे हैं बच तव एतत् जनदेव, बलि महाराज को जनदेव कह रहे हैं, क्योंकि वे राजा जो होते हैं वो नरदेव होते हैं, जनदेव होते हैं, सामान्य लोगों के देवता हैं, देने वाले हैं, देव मतलब देने वाला, राजा जनदेव हैं। जिस प्रकार से बादल है, देवतागण है, तो राजा देता है, तो जनदेव का, ये जनदेव शब्द का कह रहे हैं कि मैं भी एक प्रजा हूं आपका, आपके पास मांगने आया हूं और आप हमको देने वाले हैं, इसलिए जनदेव, हे देने वाले, जन को देने वाले, सबको देने वाले। आपका जो वचन है सुनृत, अगेन सुनृत शब्द आया हुआ है, बड़ा सुहावना वचन है, बिल्कुल सत्य वचन है। कुलोचितम धर्मजुतम यशस्करम, जब भी हम कोई बात कहें तो हमारे बात में ये तीन चीज देखना चाहिए, जब बात कर रहे हैं किसी से तो तीन चीज होना चाहिए। एक कुलोचित, कुल का हमें विचार रखना चाहिए कि हम जिस कुल से हैं कहीं खानदान का नाम बदनाम ना होने पावे हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे बात से, तो कुलोचित होना चाहिए, क्योंकि पूर्वज लोग नाम कमाए हैं और हम अपने आचरण से, अपने बात से उस नाम को खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कुलीन बनो, कुली मत बनो। कुली जानते हैं ना, जो ढोते हैं, कुली मत बनो, कुलीन बनो, कुल के अनुकूल बनो। तो बात होना चाहिए कुलोचित, अपने कुल को देखकर के, हमारे पितर लोग क्या सोचते होंगे, हमारे दादा परदादा आठ दादा जितने भी पितर लोग हैं, हमारे वचन को सुन करके गर्व से अपना सिर ऊपर उठाएंगे कि शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर देंगे, यह पहले सोच लेना चाहिए बात बोलने से, कुलोचित होना चाहिए। और धर्मजुत, अपने अधिकार के अनुसार, अपने अधिकार से बाहर जाकर के नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कभी कभी कोई बोलता है तो कहते हैं भाई तो अपने अपने अधिकार में रहो, बाहर मत चले जाओ, ज्यादा तुम बोल रहे हो। धर्मजुत, धर्मय बात होनी चाहिए। और जसस्करम, ऐसा बात करें जिससे कुल का कृति बढ़े। भगवान कहते हैं, बलि महाराज आपने जो बात कहा है ये सभी सभ्य व्यक्ति के लिए, जेंटिलमैन के लिए यह कोड लाइन है बात करने का। बात कुलोचित होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, और ऐसा बात जो हमें नेम फेम और ग्लोरी दे। तो बलि महाराज का बात ऐसा था, और इसको सर्टिफाई स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान स्टैंपिंग कर रहे हैं कि हाँ आपका बात कुलोचित था, धर्मयुत था और यशस्कर था। अब कहते हैं होगा भी क्यों नहीं, यस्य प्रमाम भृगव सांपराये, यस्य प्रमाणम भृगव, होगा भी क्यों नहीं। फल जब प्राप्त होता है तो जब मीठा फल होगा तो पेड़ का अपने आप परिचय हो जाएगा, पेड़ अच्छा है इसलिए मीठा फल है, जज बाय रिजल्ट। तो इसके प्रमाण, यस्य प्रमाणम भृगव, इसके प्रमाण क्या है कि आप भृगुवंशियों के अनुवायी हैं। भृगुवंशी लोग आपको गाइड करते हैं, यानी गुरु गाइड करता है, आपको बतलाने वाला कोई है। हम लोगों को ज्ञान अपने से नहीं है, हम लोगों को ज्ञान दी जाती है, और ब्राह्मण और वैष्णव का काम है ज्ञान देना। कैसा ज्ञान दे, कुलोचित, धर्मयुत और यशस्कर, ऐसा ही ज्ञान। हम जब किसी को प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर, वहीं पर शुक्राचार्य भी थे, सब लोग वहीं पर थे, और उनके सामने भगवान वामन देव कह रहे हैं, और ये तो यहाँ पर हैं, कहते हैं साम पराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। और अगले जगत में यानी भगवत धाम में, यहां पर तो भृगु वंशी शुक्राचार्य का कृपा है आप पर, और ऊपर से भी कृपा है, और वह है आपके पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। यहां पर प्रहलाद महाराज का वर्णन किया गया कि प्रहलाद महाराज उनके पितामह है, और पूरे कुल में वृद्ध है एक तरह से और प्रशांत। कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रहलाद महाराज तो इतने महाजन हैं, लेकिन वे इतने आसक्त क्यों हैं अपने नाती पोतों से, बलि से आसक्त क्यों है। प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य में इस बात को बताते हैं कि प्रहलाद महाराज आदर्श इसलिए हैं क्योंकि वे प्रशांत हैं। प्रशांत हैं मतलब उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आसक्ति या कंसर्न जो है, आशीर्वाद जो है बलि के प्रति, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य लोगों के प्रति प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं, मंदिर में जाने की जरूरत क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान सब जगह हैं तो क्या मंदिर में नहीं है क्या, मंदिर में तो है ना, जब सब जगह है तो मंदिर में भी है। तो प्रहलाद महाराज ऐसा बात नहीं है कि केवल बलि के ही लिए अपना कृपा बरसाते हैं। प्रशांत शब्द कहकर भगवान कहते हैं वो सबके लिए संभाव रखने वाले हैं। प्रहलाद चरित्र में वर्णन किया गया है, भगवान नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु मैं यही रहना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे विमुख होकर के इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, उन मुड्ढों के उद्धार करने के लिए मैं यहां रह करके और उनको प्रचार करना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं। जहां तक मेरे लिए बात है, मैं तो सदैव आपके कथामृत निमग्न चित्त, आपके कथा अमृत का मैं पान करता रहता हूं, निमग्न चित्त, मेरा दिल, मेरा मन, मेरा बुद्धि सब कुछ उसी में लगा रहता है, सदैव अहर्निश आपका नाम लेते रहता हूं, वही मेरे लिए आनंद का विषय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रहलाद जी संभाव वाले हैं, जैसे भगवान सम है, प्रहलाद जी भी सम है, और यह देखी जाती है। यहां पर कृपा करने के लिए भी संभव है, और जब बलि महाराज अरेस्ट हुए थे वहां भी संभव थे, प्रहलाद महाराज डिस्टर्ब नहीं थे, सामने आए थे। तो यह कह देना कि प्रहलाद जी आसक्त थे, यदि आसक्त होते तो प्रहलाद जी भगवान के सामने लड़ाई करने के लिए तैयार थे, हमारे पोते को आपने अरेस्ट करा दिया, नहीं संभव थे। यह है प्रशांत। अब बलि महाराज का अनुमोदन करने के बाद अब उनके खानदान का, क्योंकि कुलोचित बात किए हैं तब कुल का, और जानते हैं क्या बात था कुलोचित, कौन सा ऐसा बात था जो कुलोचित था और भगवान को अच्छा लगा था, कौन बता सकता है? बात जो भी बलि महाराज किए थे उसमें से कौन बात था जो भगवान को अच्छा लगा था? मैं बताया शुरू में, सबको अच्छा लगता है, आए? हाँ ब्लैंक चेक है, वो समझने के लिए ब्लैंक चेक वाला, ब्लैंक चेक सुख दिया था। वो जो वचन कहे थे कि हे बटु बामन, जो जो मांगोगे वो मैं दूंगा, उसी बात को कह रहे हैं। ज्यादा तो बात भी नहीं हुआ है ना, बात उतना ही हुआ है ना, तो उसी बात को कह रहे हैं। देखिए बोलिएगा मत, आप लोग याद रखिएगा, उसी बात को कुलोचित कह रहे हैं। अब कुल का वर्णन कर रहे हैं, देखिए उस बात को पकड़ करके आप लोग, देने के बात को लेकर के कहते हैं कि आपके खानदान में नहीं एतस्मिन कुले कश्चित निसत्व कृपण पुमान प्रत्याखाता प्रतिश्रुत्या यो वादा दुजात है। हे महाराज बलि, मैंने कभी नहीं सुना है कि आपके खानदान में कोई कंजूस अब तक से जन्म लिया है, कोई कंजूस नहीं जन्म लिया है, बल्कि वह जो कोई कुछ मांगता है आपके खानदान में सब लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रति आख्यात, यानी वो मना कभी नहीं करते हैं, देते हैं। मैंने यह सुना है, कोई प्रश्न करता, अरे अभी तो आप छोटे बच्चे हो, ये सुन कैसे लिए, ये जान कैसे लिए? तो ये वही भगवान हैं जो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। अब जो बातें कहने जा रहे हैं वो आप लोग सुनिएगा। कहते हैं कि आपके खानदान में, अब उसका व्याख्या कर रहे हैं कि कोई कृपण नहीं हुआ है, कंजूस नहीं हुआ है। कहते हैं कोई आज तक ऐसा नहीं है जो आपके खानदान के किसी व्यक्ति से नौ संतीर्थे युद्धि च अर्थिना अनर्थ अर्थित परांग मुखे जे तम मनस्विनो मनस तम मनस्विनो नृप। कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे युद्ध या अर्थ यानी धन दौलत मांगा हो और कह करके कि हमें दूंगा और ना दिया हो, ऐसा मैंने नहीं सुना है। युद्ध का बात कहा गया है और धन दौलत का, क्योंकि क्षत्रियों का दो काम है। क्षत्रिय लोग युद्ध में निपुण होते हैं और दान देने में भी निपुण होते हैं। भगवत गीता में क्षत्रियों का यह लक्षण बताया गया है कि उनमें दान देने के, उनको देने की प्रवृत्ति होती है, 18वें अध्याय बताया गया है। तो कोई युद्ध मांगे तो वे लोग स्वीकार करते हैं, चैलेंज स्वीकार करते हैं, और वैसे ही कोई दान मांगे तो दान भी देने के लिए तैयार रहते हैं, कंजूस नहीं होते हैं, वो देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे क्षत्रिय हुए जो सर्वस्व लुटा दिए, सब कुछ दे दिए हैं, बलि महाराज स्वयं हुए। और परांग मुख कह करके और कह करके और फिर ना कह देना, आजकल तो डेली होता है, हम लोग कितना प्रोमिस करते हैं और तुरंत तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि स्टैम्प पेपर पर साइन भी करते हैं फिर भी कोर्ट में जाना पड़ता है लोग कह करके। तो समझ सकते हैं कितना हम लोगों का कॉन्शसनेस पतित हो चुका है पहले से। तो आपके परिवार में कोई भी क्षुद्र हृदय वाला नहीं हुआ है, सब साल हृदय वाले हुए हैं, और इसके प्रमाण हैं आपके परदादा प्रहलाद जी, जो कि आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशमान हैं। अब प्रहलाद जी के विषय में ज्यादा बात नहीं कहे, अब उनके परदादा से बात शुरू कर रहे हैं। यतो जातो हिरणाक्ष। अब हिरणाक्ष और हिरणकश्यप दो भाई थे, आप लोग जानते हैं इनको। अब हिरणाक्ष के विषय में बताते हैं कि जब हिरणाक्ष अपने गदा को लेकर के और पृथ्वी में चारों तरफ घूम रहे थे, तो उनका सामना करने वाला कोई नहीं था, कोई बराबरी करने वाला नहीं था। तो ये घूमते 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 गर्भ समुद्र में गए, और वहां भगवान नहीं, पूरे पृथ्वी में घूमते 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 पृथ्वी को उठा करके गर्भ में डाल दिया। भगवान गर्भोदक साईं विष्णु आए, वो भी वराह का रूप धारण कर करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में आपके परदादा हिरणाक्ष मारे गए, भगवान का विजय हुआ, लेकिन फिर भी भगवान सचमुच में अपना विजय नहीं समझ रहे थे। इतना अच्छा युद्ध हुआ था, वाह हिरणाक्ष ऐसा लड़ाई किया, किसी प्रकार से वन पॉइंट से विष्णु जीत गए। स्वयं विष्णु कह रहे हैं, वामन देव विष्णु हैं, तो ये जो बात है सब सही बात हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत बलशाली था, और इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि हिरणकश्यप और हिरणाक्ष दोनों कौन थे। ये लोग भगवान के वॉचमैन थे, और भगवान की इच्छा थी कि कोई हमसे युद्ध करे, लड़ाई करे, तो भगवान का इच्छा पूरा करने के लिए ये दोनों आए थे। तो यदि कमजोर होता तो फिर मजा नहीं आता है? बराबरी वालों में युद्ध होता है। तो वही बात करते हैं, आत्मानं जैनम मेने तद्वीर्य भूरि अनुस्मरण। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं बार बार स्मरण करते रहे तत् वीर्यम, उसके पराक्रम को, बार बार विजय होने के बाद में आत्मानम जैनम मेने, विजय प्राप्त करने के बाद भी विष्णु बार बार ये सोच रहे थे कि वाह कैसा लड़ाई हिरणाक्ष किया, मैं विजयी हुआ लेकिन लड़ाई वास्तव में अच्छा था। अब हिरणाक्ष का बात हो गया। कहते हैं जब आपके दूसरे परदादा यानी प्रहलाद जी के पिताजी निशम्य तदवधम भ्रातृ हिरणकश्यपुपुरा हन्तुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगाम निरय हरे। अगेन निशम्य शब्द आया हुआ है, सुन करके समझ कर करके कि भाई मारा गया, और किसने मारा, विष्णु ने मारा। जब आपके परदादा हिरणकश्यपु ने सुना कि उनके भाई हिरणाक्ष को विष्णु मार दिया है, तो भाई के को मारने वाले को वध करने के लिए, विष्णु को मारने के लिए विष्णु के धाम में पहुंच गए आपके परदादा। अब विष्णु जब देखे हिरणकश्यपु को क्रोध पूर्वक आते हुए, हिरणकश्यपु मृत्यु के समान लग रहा था, खूंखार भयावह लग रहा था, वहां से विष्णु को भागना पड़ा। वो भागते गए और हिरणकश्यपु उनके पीछे पीछे आ रहा था, पीछे पीछे आ रहा था। जब विष्णु ने देखा कि हमारे परछाई के समान हिरण्यकश्यपु हमारा पीछा कर रहा है, हमारे मृत्यु के समान। मृत्यु हम लोगों का हमेशा पीछा कर रही है, जैसे परछाई है, परछाई हमसे कभी अलग नहीं हो सकता है, वैसे ही मृत्यु हमसे अलग नहीं हो सकती है। मृत्यु सदैव हमारे साथ में है। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय एक देह प्राप्त होता है और एक मृत्यु, दोनों, जन्मोताम वीर मृत्यु जन्मोताम वीर। वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि हे वीर, जब प्राणी देह ग्रहण करता है तो उसके साथ में मृत्यु भी जन्म लेती है। तो मृत्यु साया के समान, छाया के समान पीछे पीछे चल रही थी और हिरण्यकश्यपु विष्णु इसको देख रहे थे। तो विष्णु ने सोचा, अब मैं कहाँ जाऊं, सब जगह प्रयास किए जाने के लिए, लेकिन वहां हिरण्यकश्यपु गदा लेकर के दिखाई पड़ रहा था। तो विष्णु डर करके तुरंत छोटा रूप धारण कर करके और उनके नासिका से आपके परदादा के हृदय में आकर के छिप गए। विष्णु ही बता रहे हैं अपने बात को, कैसे कैसे वो किए, छिप गए। और आपके परदादा सब जगह खोजे, सब जगह, जब विष्णु कहीं दिखाई नहीं पड़े, भ्रातिहामे गतो नूनम ये तो ना आवर्तते पुनः पुमान। तो उन्होंने सोचा कि अब सब जगह खोज लिया, अब मर गया। कहते हैं अब वहां चला गया, भ्रातिहा में गतो नूनम, नूनम मतलब निश्चय ही, भ्रातिहा भाई को मारने वाला चला गया। कहां चला गया, यह तो न आवर्तते पुमान, जहां जाने के बाद व्यक्ति वापिस नहीं आता है, वहां ही चला गया, यानी मर गया। तब उन्होंने सोचा कि अब मर गया तो मरे हुए व्यक्ति से अब बैर रखने से क्या फायदा। इस प्रकार से विष्णु का पीछा छोड़ दिया आपके परदादा ने। अब प्रहलाद महाराज के विषय में होना चाहिए, परदादा दादा का होना चाहिए, दादा का बात पहले हो चुका है कि वो तो अपने ख्याति के चलते आकाश में चंद्रमा के समान सदैव दिखाई पड़ते हैं। अब उनके पिता का बात कह रहे हैं, पिता प्रहलाद पुत्र हते, तुम्हारे पिताजी जो प्रहलाद के बेटे थे यानी विरोचन, उनके लिए तद विद्वान जिद्वत्सल स्वयं स्वयं आउ द्विजलिंगेभ्य देवेभ्य अदास्याचित। अरे आपके पिताजी तो ऐसे दानी हुए, ऐसे दानी हुए कि देवता लोग ब्राह्मण का रूप धारण कर करके आए थे और आपके पिताजी से वे लोग उनका शरीर मांगे या अपना शरीर दान दे दिए, क्योंकि आपके पिताजी ब्राह्मणों के इतने अच्छे भक्त थे। ये असुर लोग, कभी कभी देखा जाता है कि ये लोग ब्राह्मणों के विष्णु के विरोधी होते हैं लेकिन ब्राह्मणों के भक्त होते हैं। भागवतम में अन्यत्र एक कथा है जरासंध का। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे तो उनके पास दो जगह से निमंत्रण आया, एक हस्तिनापुर से जहां पर महाराज युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करने जा रहे थे और एक मगध से। जरासंध 99 राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, एक राजा और ढूंढ रहा था, एक और राजा मिल जाता तो 100 राजाओं का बलि देने वाला था। तो उन लोगों का भी निमंत्रण गया भगवान से रक्षा के लिए। तो दोनों शरणागत हैं, एक हैं युधिष्ठिर और दूसरे ये राजा लोग। तो प्रश्न उठता है कि पहले कहाँ जाएं, दोनों डेट एक ही पड़ गया, असमंजस में हम लोग कभी पड़ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान सोचे अब करूं क्या, तो भगवान उद्धव जी के पास गए और उद्धव जी से पूछे, उद्धव जी भगवान के मंत्री थे, उनसे पूछे क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा देखिए दोनों शरणागत हैं, युधिष्ठिर भी शरणागत हैं और इधर राजा लोग भी शरणागत हैं, लेकिन दोनों के निमंत्रण में भेद है। एक यज्ञ कर रहा है वहां पर आनंद का बात है, और एक का प्राण संकट में है, यहां दुख का बात है। जब ऐसी परिस्थिति हो कि शादी विवाह में जाएं, कि किसी का तबीयत खराब हो गया उसको हॉस्पिटल करके जाएं, क्या करोगे आप लोग? हॉस्पिटल ना। तो भगवान ने भी वही काम किया। भगवान ने कहा कि यज्ञ में बाद में जाएंगे, पहले इधर जाना जरूरी है, यहां जाना है। लेकिन उद्धव जी ने कहा कि आपको जाना वहां पर है, लेकिन डायरेक्ट मत वहां चले जाओ, हस्तिनापुर होकर के ही जाना वहां पर, दोनों काम हो जाएगा। क्योंकि जो जरासंध है, जब उसका जन्म हुआ था तो उसका जो शरीर था अलग अलग था, और जरासंध के पिताजी इसको फेंकवा दिए थे। तो उस राज्य में एक राक्षस रहती थी जरा नाम की, वह उस दोनों फ्लैश के लंब को उठा करके जोड़ दिया, तो हुआ जरासंध। तो कहा कि देखिए, जरासंध को मार देंगे तो दोनों का रक्षा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा वो कैसे? तो उद्धव जी ने कहा कि देखिए, जब तक से जरासंध को परास्त नहीं किया जाएगा, तब तक से महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ नहीं हो पाएगा। राजसूय यज्ञ मतलब सब राजा लोग जितने हैं वे शरण में आ जाएं, और जरासंध शरण में आने वाला है नहीं, तो मारना ही पड़ेगा। और यदि मार दिया जाएगा तो अन्य जितने राजा लोग जो कैदी हैं उन लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, अच्छा बात कहे, अब क्या करना चाहिए, अब उपाय बताइए कुछ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप सब जानते हो, लेकिन पूछ रहे हो तो ठीक बता ही देता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, जरासंध विष्णु का विरोधी है लेकिन ब्राह्मणों का सेवक है, तो आप हस्तिनापुर से भीम और अर्जुन को लीजिए, और आप तीन आदमी ब्राह्मण का रूप धारण कर करके और मगध आइएगा। ब्राह्मण का रूप धारण करके आप लोग आएंगे तो जरासंध आप लोगों को खूब खातिर बातिर करेगा, और जब जाने लगेंगे तो वो कुछ कहेगा कि आपको कुछ चाहिए तो मांग लीजिए, आप लोग कुछ दान मांग लीजिए, रास्ते के लिए खाना पीना कुछ चाहिए तो मांग लीजिए, तो आप लोग उसे मल्ल युद्ध मांगना, कुश्ती। तो उद्धव जी के कथनानुसार भगवान हस्तिनापुर आए, और अर्जुन भीम को लेकर के सब ब्राह्मण का रूप धारण करके के आए मगध। खूब जरासंध उन लोगों का सेवा किया, लेकिन इनके चाल चलन से जरासंध समझ रहा था कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये सब क्षत्रिय हैं, क्योंकि उनके कंधे पर धनुष धारण करते करते चिन्ह लगा हुआ था, उनका कंधा चौड़ा था, चल रहे थे तो गजराज के समान चल रहे थे। तो जरासंध हाव भाव से समझ गया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण का भेष धारण करके आए, क्या करे, करे से क्या। जब जा रहे थे तब जरासंध पूछा कि और कुछ इच्छा बाकी रह गई है, और कुछ चाहिए तो बताइए क्या चाहिए। तो कृष्ण कहा कि हाँ, यदि आप देना चाहते हैं तो हम लोग आपसे मल्ल युद्ध चाहते हैं, आप हम में से किसी से लड़ाई कर सकते हैं। तब भगवान तब जरासंध का बस 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 इसी समय का प्रतीक्षा कर रहा था। अरे कृष्ण, अब मैं पहचान गया तुम लोग कौन है, तू कृष्ण है या भीम है या अर्जुन है। देख, तू तो डरपोक है, तू तो लड़ाई के मैदान से छोड़ करके भाग गया था, तो डरपोक आदमी से लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। इतना निर्लय था जरासंध कि 18 बार हारा था, है? अपने को नहीं कह रहा था कि मैं डरपोक हूं या मैं हारा हुआ हूं। भगवान एक बार लीला करने के लिए रणछोड़ जी बनने के लिए चले गए तो उसके लिए तहलका कर दिया, है? कि तुम तो लड़ाई छोड़कर भाग गया था, 18 बार अपने भागा था, उसका नहीं बात कर रहा है। और जहां तक अर्जुन का बात है, छोटा भाई है, छोटा लड़का है, ये पटक देगा हमको तो भी मेरा नाम बदनाम होगा, और पटका जाएगा तो भी नाम बदनाम होगा, कि छोटे आदमी से क्या लड़ाई करने का। हाँ, जहां तक भीम का बात है, चलो यही ठीक है। तो मैं ये बात कहने जा रहा था कि असुर लोग होते हैं तो विष्णु को नहीं मानते हैं लेकिन ब्राह्मणों को मानते हैं, जैसे जरासंध। वैसे ही विरोचन ब्राह्मणों का बड़ा पुजारी था, और भगवान वामन देव कह रहे हैं कि जानते हुए भी, जैसे जरासंध जानता था कि अर्जुन भीम और ये कृष्ण हैं, फिर भी उनका सेवा सत्कार किया। वैसे ही विरोचन जानते थे कि देवता लोग हैं, लेकिन फिर भी अपना शरीर उन्होंने दे दिया। और इतना कहने के बाद कहते हैं, तुम भी एक कुलोचित शब्द का व्याख्या कर रहे हैं, जैसे तुम्हारा कुल था वैसा ही तुमने भी है, तुम भी वैसे ही किए हो। अमन एक बात देखे हैं, ये तीनों लोगों का जो बात आया हुआ है, हिरणाक्ष का, हिरण्यकश्यपु का और विरोचन का, ये तीनों में एक वस्तु है कॉमन, और वह कॉमन है कि प्राण चला गया लेकिन वचन से लोग नहीं मुकरे हैं। प्रहलाद महाराज का नाम इस तीनों में से नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज के सामने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। प्राण चला गया लेकिन वचन से वे लोग नहीं मुकरे, यानी भगवान हिंट कर रहे हैं कि आप कुलोचित बात कहे हो तो मुझे आशा है आप भी ब्लैंक चेक दे करके चेक को बाउंस नहीं करा दोगे बाद में, यानी जो कहे हो करोगे। ये जब भी डोनेशन मांगने हम जाएं तो पहला नंबर तो ये है कि हम डोनेशन मांग नहीं सकते हैं, मांगने में एक्सपर्ट केवल भगवान है। यदि भगवान के बिहाफ में जाते हैं तो थोड़ा गुण हम में आ सकता है। तो जब भी हम जाएं तो जिसके व्यक्ति पर जा रहे हैं उसके विषय में जानना चाहिए, व्यक्ति है कैसा, परिवार में लोग कौन कौन हैं, उसके खानदान का रेपो क्या है देने का, इत्यादि बहुत कुछ जानना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। जय श्री श्री गौनताई की जय। तो कोई अच्छा से दान मांग सकता है। तो मानो बामन भगवान सब कुछ पूरा जान करके ये बात किए हैं, और कहते हैं बड़े इतना सब पूरा बात कहने के बाद, उनका गुणगान करने के बाद, खानदान का गुणगान करने के बाद, अब अपना जो चाहिए एकदम बहुत कैसे कहते हैं उसको, वेरी जेंटिल वे बामन भगवान कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अपने पूर्वजों के सिद्धांतों का पालन करेंगे जैसे उन लोगों ने किया है। अब यहां पर चढ़ा देने के बाद कहते हैं, तस्मात् ततो महीसिदः वृणे हम वरदर्शभात् पादानि त्रिण दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। अब जो मांगना चाहते थे अब मांगे हैं इस श्लोक में, कहते हैं तस्मात् त्वतः महिम ईशतः। हे प्रभु, मुझे थोड़ी थी, इसका मतलब थोड़ी सी पृथ्वी चाहिए। आप तो वरदर्शभा हैं, देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वरदा ऋषभात हैं, ऋषभात मतलब श्रेष्ठ, मुक्त हाथ से दान देने वाले हैं, मैग्नेनिमस हैं, दिल खोल कर देने वाले हैं। आपके पास मैं आया हूं, वृण अहम मैं मांग रहा हूं, पदानी त्रिणी दैतेन्द्र, हे दैतेन्द्र, हे दैत्यों के राजा, मैं आपसे तीन पग जमीन मांगता हूं, लेकिन सम्मितानी पदाम ममा, उसको मैं नापूंगा। एक क्रंचिंग पॉइंट है, पदाम ममा, तीन तीन पग चाहिए लेकिन वो मेरे पग से। भगवान क्लियर किए, केवल कहते कि तीन पग जमीन चाहिए तो बलि थोड़ा इतना हो जाता है और क्या। लेकिन कहते पदाम मम, हमको केवल तीन पग जमीन चाहिए, थोड़ी सी जमीन चाहिए, इसी से मुझे संतोष हो जाएगा। नान्वत्ते काम ये राजन वदान्यः जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावद् अर्थ प्रतिग्रह। कहते हैं बस बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तीन पग ही जमीन चाहिए हे जगदीश्वर। यहां पर जगदीश्वर कह रहे हैं बलि महाराज को, भगवान वामन देव जो स्वयं जगदीश्वर हैं, वो बलि को जगदीश्वर कह रहे हैं। किस भाव में जगदीश्वर कह रहे हैं? कहते बदान्यात, देने वालों में आप जगदीश्वर हैं। और सही में दान में बलि महाराज के समान कोई नहीं है। नवधा भक्ति में जो आत्मसमर्पण का बात है वो बलि महाराज का आता है। आत्मनिवेदन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन के उदाहरण है बलि महाराज। इसलिए वामन देव कहते हैं जगदीश्वरात्, आप जगदीश्वर हैं देने वालों में से। अब यहां सिद्धांत कहते हैं नयन प्राप्नोति वही विद्वान, जो विद्वान लोग हैं वे लोग उतना ही जमीन चाहते हैं, उतना ही रखना चाहते हैं जितना उनकी आवश्यकता हो, नहीं तो ज्यादा लेने से प्रतिग्रह, प्रतिग्रह रूपी पाप उन पर लग जाता है। हमें उतना ही वास्तव में रखना चाहिए जितना से अपना काम हो जाए, नहीं तो प्रतिग्रह का दोष लग जाता है। भगवान सबके लिए व्यवस्था कर दिए हैं, ईशावास इदम सर्वम यत किंचित याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माघ कश्चन धनम। दूसरे के धन के लिए हमें गिद्ध नहीं बनना चाहिए, गिद्ध दृष्टि लगाए रहते हैं वैसे नहीं, नहीं तो उसके उस व्यक्ति पर प्रतिग्रह का यानी आवश्यकता से ज्यादा ग्रहण करने का दोष लगता है और प्रतिग्रह हानिकारक होता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वर्णन करते हैं कि छह ऐसी वस्तुएं हैं जो भक्ति में वृद्धि करती है और छह ऐसी वस्तुएं हैं जो भक्ति में हानिकारक होती हैं। भक्ति इन्हें किसी भी काम में, बिजनेस ही ले लीजिए, कोई भी काम हो, उसमें छह वस्तुएं हैं जो हानिकारक होती हैं और उसमें से एक है प्रतिग्रह। अत्याहार, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पन नियमाग्रह जनसंगस्य लोलुप्यम सर्वीर भक्तिर विनश्यति। तो अत्याहार या प्रतिग्रह दोनों एक ही शब्द है, जितना जरूरत पड़े उतना ही। अच्छा, ये अत्याहार और प्रतिग्रह जो है ये केवल मनुष्यों में है, पशुओं में नहीं है। इसीलिए पशु लोग को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बड़े चलते रहते हैं। कुत्ता बेचारा दिन भर दौड़ता रहता है, उतना ही खाए इतना चाहिए। पक्षी प्रभाज कहते हैं कि कोई रूम है उसमें आप चना भर दो या चावल रख दो, एक चिड़िया को रख दो, तो चिड़िया भर पेट खा करके उड़कर चली जाएगी। लेकिन दो पैर वाले चिड़िया को उसमें डाल दो तो भर पेट खाएंगे भी और थोड़ा बांध कर भी ले जाएंगे। हम लोगों में प्रतिग्रह की बड़ी भावना है, बैंक बैलेंस करने का है? इंडियन और अमेरिकन, अमेरिकन लोग चिड़िया के समान है, वो ज्यादा नहीं प्रतिग्रह करते, इंडियन लोग ज्यादा प्रतिग्रह करते हैं। एनीवे, कभी कभी अच्छा भी होता है। तो हमें संतोष से काम करना चाहिए, जितना है उतना में ठीक है। और जिसमें संतोष है सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। एक कथा मुझे याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति था, एक महात्मा थे, उनको मंदिर बनाना था। तो वे किसी सेठ जी के पास गए, उनके सहयोग का अपेक्षा रख कर के, और उनसे कहा कि मैं एक मंदिर बना रहा हूँ और मुझे कुछ आप सहयोग कर दीजिए मंदिर बनाने में। तो सेठ ने कहा कि महात्मा जी, आपको किसी ने गलत रास्ता एड्रेस दे दिया है, मेरे पास धन नहीं है, ये बगल वाले के पास जाइए। क्योंकि सब लोग पॉश एरिया में थे ना, सबका अपना अपना बंगलो था। है तो कहे कि मेरे पास धन नहीं है, वो बगल वाले के पास है, आपके पास गलत एड्रेस से आप आ गए हैं। तो महात्मा ने कहा, तो झूठ क्यों बोलता है, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हारा 3 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगा, और तू कह रहा मेरे पास धन नहीं है। अब महात्मा ने इतना कहा कि सेठ तुरंत महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महात्मा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमारा 3 पीढ़ी बैठकर खाएगा तो चौथे पीढ़ी का क्या होगा। इसको चिंता लग गई, इसको महात्मा के बात की परवाह नहीं है कि महात्मा को चाहिए मंदिर बनाने के धन, उसको चिंता लग गई चौथी पीढ़ी का, हमारे पास केवल 3 पीढ़ी के लिए, चौथा पीढ़ी क्या होगा। तब महात्मा कहे ठीक है, बता रहा हूं। कहे कि देखो, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हो तो उसका इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही पुण्य एक ऐसी वस्तु है जिसका इंटरेस्ट मिलता है। यदि तुम तमोगुणी पुण्य करोगे तो 10% उसका इंटरेस्ट मिलेगा, जो तुम्हारे चौथे पीढ़ी के लिए हुआ। तमोगुणी पुण्य होता है जो कि निडी व्यक्ति को दिया जाता है, वो तमोगुणी दान कहलाता है या पुण्य कहलाता है। रजोगुणी करोगे तो उसका रिटर्न तुमको 50% मिलेगा, और रजोगुणी एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए, समाज के लिए किया गया जो कार्य है वो रजोगुणी पुण्य है या दान है। सतगुणी पुण्य करोगे या दान करोगे तो तुम्हें 100% रिटर्न मिलेगा, यानी देवी देवताओं के लिए कुछ करोगे। लेकिन यदि भगवान के लिए करोगे, मंदिर बनाने के लिए करोगे, भगवान अनंत हैं इसलिए तुमको अनंत फायदा मिलेगा, उसका रिटर्न अनंत होगा, तो तुम्हारा चौथा पीढ़ी क्या अनंत पीढ़ी तक का काम चल जाएगा। तो महात्मा अच्छा प्रचार किए, लेकिन उसके भेजा में कुछ नहीं गया, वो केवल चौथा पीढ़ी दिखाई पड़ रहा था। तो महात्मा कुछ दे दिए, चले गए। अब दूसरे दिन से वो सोचा, महात्मा जी बात तो कह दिए हैं कि पता नहीं कितना सही है, ऐसा तो नहीं कि हमारा तीसरा पीढ़ी का जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं निडी व्यक्ति को दूंगा। तो दान करना शुरू किया, डेली जो गरीब होते थे एक आदमी को खाना पीना का व्यवस्था वो करता था। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन एक व्यक्ति आया, कोई आ ही नहीं रहा था, तो एक आया व्यक्ति बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा पहना था और दुबला पतला था। तो सेठ ने कहा, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हें मालूम नहीं है मैं देता हूं, दान दे रहा हूं, आओ जो चाहिए ले लो, चलो आओ। जो तमोगुणी दान देते हैं उन लोगों को अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है, हालांकि सबको होता है, रजोगुणी वालों होता है। तमोगुणे खुला बोल देते हैं, रजोगुणी वाले बोलते हैं लेकिन थोड़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख करके, और जो सतगुणी वाले हैं शर्माते हैं बोलने में, क्रेडिट चाहते हैं। हम लोग कई एक लोगों से मिलते हैं, कहते हैं महाराज मैं पैसा दान दूंगा लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अंदर भावना है कि नाम आना चाहिए लेकिन कहते नहीं है। लेकिन नाम डाल तो फिर कहने नहीं करे, मैं आपको बोला था नाम क्यों डाल दिया आपने, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे लोगों से मिले हैं, अपने प्रचार में मिले हैं। मुझे एक और इसी घटना में एक घटना याद आ रही, जब मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था तो एक बॉम्बे से आए व्यक्ति, मैं बताना नहीं चाहता हूँ कौन थे, एनीवे आए, और गर्मी का दिन था, और सौभाग्य और दुर्भाग्यवश उस दिन मैं ही क्लास दे रहा था, तो प्रसादम हॉल जो वृंदावन में है वहाँ पर गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी था, पंखे थे लेकिन कम पंखे थे। तो मुझे जानता था बॉम्बे से, तो कहा कि देवकीनंदन जी मैं पंखा दान देना चाहता हूँ यहाँ के लिए। मैं कहा ठीक है। तो पंखा लेकर के आए और अच्छा पंखा लगा दिया। वो कहे कि हमारे पिताजी का नाम इसमें होना चाहिए। मैं कहा ठीक है, नाम लिखवा देंगे। तो पंखे के पत्तों पर नाम लिखा दिया गया था। ठीक है। अब मैं सुना, मैं उस समय नहीं था, बाद में कुछ दिन के बाद आए तो एक कोई दूसरा भक्त क्लास दे रहा था, वो भी क्लास में बैठे और पंखे पर देख रहे थे। तो पिताजी का नाम दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो बाद में क्लास के बाद जो भक्त क्लास दे रहा था, भक्त का नाम था रामाकांत, से पूछे कि मैंने देवकीनंदन जी को पैसा दिया था पंखा लेने के लिए, वो पंखा आया कि नहीं। तो कहाँ प्रभु जी, पंखा तो आया था। तो भंग कहाँ है, तो ऐसा पंखा आपका ही है। तो अरे, तो मेरे पिताजी का नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं दिया था पिताजी के नाम से तो नाम ही दिखाई पड़ रहा है। तो रमाकांत कहा कि पंखा चल रहा है तो नाम कहाँ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे भी लोग दाता लोग होते हैं, देते हैं नाम के लिए, अब पंखा चल रहा है नाम कहाँ दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब पंखा बंद कर दो ही ना, क्या फायदा। एनीवे, चलिए ओरिजिनल कथा पर आते हैं हम लोग। तो जब वो व्यक्ति आ रहा था तो कहा कर तुम आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दान देना चाहता हूँ। तो आया, खड़ा हो गया, देखने लगा, कहा कि देखिए आप देना चाहते हैं दान, ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछ करके आ रहा हूँ, तब तो मैं आपका दान लूंगा। कहा तो महामूर्ख है, देखने बिल्कुल कंगाल लगता है, खाया पिया नहीं है, कपड़ा फटा हुआ है, कहता है पत्नी से पूछ करके आऊंगा, जाओ पूछ करके आओ। वो गया घर, पूछ करके फिर आया और बड़ा सरल स्वभाव से कहा कि देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप देना चाहते हैं, मेरी पत्नी कही है कि आज भर के लिए है, कल किसने देखा है, इसलिए आपका दान हमको नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। इतना वो कहा कि उसमें वैराग उत्पन्न हो गया कि बाप रे बाप, इसके पास आज के लिए है, कल की चिंता नहीं है, हमारे पास 3 जन्म का है और हमें चौथे जन्म का चिंता लगा हुआ है। मुझे वैराग उत्पन्न हो गया तुरंत। तो मैं कह रहा संतोष से आनंद आता है, जब संतोष रहेगा तो जितना रहेगा उसी में हम लोग संतुष्ट रहेंगे। वास्तव में कल वाला जो है ना, वही तकलीफ का कारण बनता है, कल का जो संजोित कर करते हैं। इसलिए प्रतिग्रह, प्रतिग्रह एक पाप है, प्रतिग्रह नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे का प्रसंग शुरू करेंगे। आज दामोदर नहीं आए, क्या बात रह गया, मृदंग कोई बजा सकता है? ये आप लोग याद रखिएगा कि जिनको भगवान दिए हैं वो देने के लिए दिए हैं, यदि वो नहीं देंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, धन का कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। है, बादल वर्षा को रोक कर रखता है लेकिन जरूरत पड़ने पर वो देता है। नहीं, यदि बादल देगा तो पूरा बादल फट जाएगा भार के चलते और प्रलय हो सकता है। तो भगवान अच्छा व्यवस्था किए हैं, जिसके पास है उसे देना चाहिए, इसीलिए उसे मनस्वी कहा जाता है, देने वाला मनस्वी कहलाता है, भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए कि हम जब हम सब लोग जानते, सत्य बात है, हम जन्म लिए थे खाली हाथ, मरेंगे खाली हाथ, ये सब बीच में मिला हुआ है, तो क्रेडिट लेने में क्या तकलीफ है, क्रेडिट लेने में क्या तकलीफ है। मरते दम तक कुछ लोग ऐसे हैं जो देना नहीं चाहते हैं, अरे छोड़कर यहीं जाओगे, ले लो क्रेडिट। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि लोग गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी का पानी लेकर के गंगा जी का पूजा करते हैं, अपने घर से क्या लेकर के आए, उनको गंगा जी के भक्ति का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वैसे ही ये भगवान का दिया हुआ है, दो अच्छे काम के लिए, भगवान के प्रचार कार्य में ले सहयोग करो, आपको भगवान की भक्ति मिल जाएगी, नहीं तो अंत समय तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जिसको भगवान दिए हैं उसे देना सीखना चाहिए। बोली महाराज सीखना चाहिए। एनीवे, अब भगवान कह दिए कि प्रतिग्रह का पाप लगता है ज्यादा संग्रह करके रखने से, जितना जरूरत उतना ही रखना चाहिए। अब भगवान कहकर चुप हो गए। अब बलि महाराज को देखिए क्या हुआ, इनके शरीर में आग लग गया यह सुन करके कि 3 पग जमीन मांग रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है। श्री बलि रुवाच, अहो ब्राह्मण दयादह वाचहते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रति अबुदो यथा। कहते अहो ब्राह्मण दयाद, हे ब्राह्मण के जात वाले, दयाद मतलब जाति वाले, मतलब गुस्सा में दांत पीसते हुए बलि कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण के जात वाले हैं केवल, तुम ब्राह्मण नहीं हो है? तुम ब्राह्मण के जात वाले जने पहन लिए हो, ब्राह्मण जैसे लगते हो। दयाद, दयाद मतलब जात वाला, खानदान वाला। अहो ब्राह्मण दयादह, ब्राह्मण का पुत्र, बचाते वृद्ध सम्मतः, बात तो खूब बूढ़ा के समान किया तू, कितना अच्छा अच्छा बात किया, हमारे दादा परदादा सब लोगों के विषय में सब जानता था, तुम सब बात बता दिया। वृद्ध सम्मत मतलब ज्ञानियों के समान तूने, विद्वानों के समान, गुरुजनों के समान तूने बात किया, लेकिन बच्चा हो ना, तुम बालो बालस्मती, तुम छोटा बच्चा है, बात छोटे बच्चे भी बड़ा बड़ा बात कभी कर लेते हैं, लेकिन बुद्धि उनकी बच्चों के ही होती है। कहते हैं तुम बात करने में बहुत चतुर हो, विद्वान के समान बात किया, लेकिन तुम बालक हो इसलिए बालस्मति, तुम्हारी मति भी है, बुद्धि जो है वो बालक के समान है, इसीलिए क्योंकि बालक की बुद्धि वाले लोग नहीं जानते हैं कि हमारा हित किस में है, बाप माँ जानते हैं उसका हित किस में है। तो कहते हैं इसीलिए स्वार्थम प्रति अबुधो यथा, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है, ठीक ठीक मालूम नहीं है कि तुम्हारा हित किस में होगा, तुम्हारा कल्याण किस में होगा, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम किसके पास मांगने आए हो, तुम जानते नहीं मेरा परिचय, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अरे अभी तो कितना सुंदर सुंदर बात बताया हमारे विषय में। कहते माँ बाचो भी समाराध्य लोकानाम एक ईश्वरम पवित्रम वृणेति यो अबुद्धिमान दीप दीप अदासु अदासुसम। कहते माम बाचो भी समारध्य, तुम अपने वचन से मेरा आराधना किया है, तुम मुझको संतुष्ट किया है अपने वचन के द्वारा। बलि महाराज जितना सुंदर बात कहे थे, सॉरी बामन भगवान बलि को फुला दिए, चढ़ा दिए थे खूब, खानदान का उसका सब बड़ाई करते करते, तो इस बात को बलि स्वीकार करते हैं। माम बाचो भी समाराध्य, सम्यक रूप से मेरा तूने आराधना किया, मुझको सही सही रूप से संतुष्ट कर दिया अपने वचन के द्वारा, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? लोकानाम एक ईश्वरम, पूरे संसार का एकमात्र सम्राट मैं हूं। बात सही था, कोई नहीं था, सब छिपे हुए थे देवता लोग, पूरे स्वर्ग का पृथ्वी का सब राज बलि महाराज के हाथ में था, इसलिए कहते हैं लोकानाम एक ईश्वरम, पूरे जगत का मैं एकमात्र एकराट सम्राट हूं। और इतने बड़े आदमी के पास आकर के पदत्रय वृणेति यो अबुद्धिमान, हे मूर्ख अबुद्धिमान, तू बिल्कुल बुद्धिमान है, तू बिल्कुल मूर्ख आदमी है, हमारा इंसल्ट कर रहा है इतना बड़ा आदमी के पास आकर के। अरे और नहीं तो एक दीप ही मांग लेता है, 9 दीप में से एक दीप ही मांग लेता, एक दीप में 7 समुद्र होते हैं, एक मांग लेता, क्या तकलीफ था, मैं दे देता, लेकिन तुम्हें तो वो भी समझ में नहीं आया क्योंकि तू बुद्धिमान नहीं है, तू मूर्ख है। एक दीप में 7 समुद्र होते हैं, जैसे हम लोग जहाँ पर हैं वह जम्बू द्वीप कहलाता है, सॉरी 7 वर्ष होते हैं, इला वर्ष, मद्रा वर्ष, हिरण्यवत वर्ष, किम पुरुष वर्ष, भारत वर्ष, नाभि वर्ष, हरि वर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष और कुरु वर्ष। ये 9 अलग-अलग छोर हैं यहाँ पर एक एक द्वीप में, और यहाँ पर 9 अलग-अलग प्रकार के समुद्र हैं, और वैसे ही 9 प्रकार के पर्वत हैं जो इनके सीमाओं को बांध करके रखे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं यदि तुम चाहता तो मैं तुमको दे सकता था द्वीपम दासुसम, मैं समूचा द्वीप दे सकता था, एक क्या समूचा द्वीप दे सकता था तुमको, लेकिन तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें मांगने भी नहीं आता है। चला है मांगने के लिए, ब्राह्मण का भेष धारण किया, मांगने भी नहीं आता है तुम्हें, मेरा इंसल्ट कर दिया। प्रभुपाद जी एक बार इसी बात पर एक घटना घट गई थी प्रभुपाद जी के साथ में, जब प्रभुपाद जी आकाश गंगा में बॉम्बे रहते थे अपार्टमेंट में, तो प्रत्येक दिन वे आया करते थे बर्ली सी फेस पर मॉर्निंग वॉक के लिए। वहां पर मिस्टर नेवाटिया का घर था, वही प्रभुपाद जी के साथ में आते थे, क्योंकि बहुत विदेशी भक्त साथ में थे 10-15, तो जितने बड़े बड़े लोग थे सब प्रभुपाद जी के साथ में मॉर्निंग वॉक में आया करते थे। एक बार मिस्टर बिरला आए, कलकत्ता से आए हुए थे, तो वे मॉर्निंग वॉक के लिए आए, वे नेवाटिया के रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मिस्टर बिरला से कहा कि स्वामी जी अमेरिका से आए हैं, बड़ा अच्छा प्रचार किए हैं, देखो कितना भक्त लोग लेकर आए हैं, हम लोग तो इनके साथ में डेली जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, और बाद में हम लोग शाम को जा करके इनके पास बैठते हैं और बड़ा अच्छा अच्छा बात सुनाते हैं, आज आप भी चलो हमारे साथ मॉर्निंग वॉक करो और शाम को आना स्वामी जी से सुनने के लिए। तो मिस्टर बिरला ने कहा कि नहीं नहीं मैं किसी स्वामी के पास नहीं आता हूँ। अरे स्वामी के पास जाने पर वो लोग पैसा मांगते हैं, तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, हो गया। शाम को सब लोग आए तो मिस्टर नेवाटिया प्रभुपाद जी से यह घटना बतलाए, तो प्रभुपाद जी हंसने लगे और हंस करके यही श्लोक कोट किए थे, यही श्लोक कोट किए थे प्रभुपाद जी, और उन्होंने कहा कि देखिए आजकल के बलि महाराज और पहले के बलि महाराज, आज के बलि महाराज यदि ब्लैंक चेक दे देंगे और कोई 3 रुपया लिखेगा तो बड़े खुश होंगे, कहेंगे ओ स्वामी जी कितने संतोषी हैं, स्वामी जी बड़े संतोषी हैं, 3 रुपया ही केवल लिखे, और पहले के बलि महाराज 3 पग मांगने पर उनको गुस्सा आ गया, तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं अंतर कितना है, वो लोग इंसल्ट समझते थे, तो बलि महाराज इंसल्ट समझे। और फिर आगे कहते हैं कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम्हें मांगना चाहिए था, फिर सेकेंड चांस दे रहे हैं, कहते हैं न अपमान माओ व्रजम भोजाचिम तुम अर्हसी तस्मात वृति करी भूवि बटो काम प्रतीक्ष में, हे बालक हे ब्राह्मण फिर से सोच लो, मैं तुम्हें सेकेंड चांस दे रहा हूं, देखो मेरा स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है कि जो व्यक्ति एक बार हमारे पास मांगने आ जाता है मैं उसको इतना देता हूं इतना देता हूं इतना देता हूं कि सेकेंड टाइम उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बॉम्बे के झवड़पट्टी वालों जैसे नहीं, वो गवर्नमेंट को घर देती है, वो घर बेच करके फिर झवड़पट्टी चले जाते हैं, भाड़ा पर लगाते हैं फिर झवड़पट्टी चले जाते हैं, लेकिन बलि महाराज के राज में पक्का सिस्टम था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम नहीं है, यहाँ पक्का सिस्टम था। कहते हैं कि जो भी एक बार मांगता है नौपमान माम उपब्रज भो जातु मरहसी, जब एक बार कोई मुझसे मांग लेता है तो वह पुनः उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए तस्मात वृतिकरी भूमि, इसलिए वृतकरी, अरे कम से कम उतना मांग लो जितना से तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो जाए, फिर सोच लो ऐसा बात नहीं कि एक बार मांग लिया तो हो गया, नहीं, फिर मां सेकेंड चांस दे रहा हूं। बटुओ कामो प्रतीक्ष में, हे बटु तुम मांगो। तब भगवान बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं संतोष के विषय में। श्री भगवान उवाच, यावंतो विषया पृष्ठ त्रिलोक्या अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृप। कहते हैं महाराज, जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने वश में नहीं है, उस व्यक्ति को तीनों लोक को भी दे दिया जाए तभी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। तीनों लोक दे दिया जाए, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। हम लोगों में चार त्रुटियां हैं, अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देने और धोखा खाने की प्रवृत्ति, भूल जाने की प्रवृत्ति और मोह माया में फंसने की प्रवृत्ति। तो ये चार त्रुटियां हैं। यदि इंद्रियां अपूर्ण है, यदि इस ग्लास में छेद है, कितना भी पानी डालते जाओ कभी इसको भर नहीं सकते हो, लेकिन छेद को बंद कर दो तो कम ही पानी में भर सकते हो। जब छेद रहेगा 10 बाल्टी पानी डाल तभी नहीं भर सकते हो, लेकिन बंद कर दो छेद को तो 1 गिलास पानी में भर सकते हो। ठीक वैसे ही जिसकी इंद्रियां तृप्त है, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति कम ही चीजों में संतुष्ट रह सकता है। लेकिन जिसके इंद्रिया में छेद है, अपूर्ण इंद्रिया है, तो संसार का पूरा धन डालते जाओ तो अभी कम ही पड़ेगा, और की इच्छा बनी रहेगी। यावंतो विषयान पृष्ठा त्रिलोका अजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए संसार का सब संपत्ति कम ही पड़ेगा, कभी पूरा न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरय तुम नृप। हे महाराज, कभी पूरित नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जीवन जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। काम सनो इंद्रिय प्रीति जाओ जीवित जावत। बुद्धिमान व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति के लिए उतना ही वस्तु संग्रह करना चाहिए जितना से काम चल जाए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इंद्रिय तृप्ति में। जिसकी इंद्रियां तृप्त नहीं है वो कभी तृप्त नहीं हो सकती है, और जिसकी इंद्रियां तृप्त है उसे किसी वस्तु की कामना नहीं है। तो क्यों समय बर्बाद करें, शक्ति बर्बाद करें उस इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कभी तृप्त हो ही नहीं सकती है। ऐसा क्यों ना कुछ काम करें जिससे कि इंद्रियां तृप्त हो सके। और वो कैसे है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परेण निर्मलम ऋषिकेण सेवनम भक्तिर उच्यते। इंद्रियां तृप्त हो सकती है तो उसके जो कंट्रोलर हैं ऋषिक मतलब इंद्रियां और इस मतलब मालिक, जो इंद्रियों के मालिक हैं उनके सेवा में अपने इंद्रियों को हम लगा दें तो इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाएगी। जैसे महाराज अम्बरीश लगाए थे, सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो वाचान से वैकुंठ गुणानुवरण ने, अपना मन भगवान के चरणों में लगाए थे, अपने जिह्वा को भगवान का गुणगान करने में लगाए थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है, अपने कान को भगवान का कथा सुनने में लगाए थे। इस प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान से बंद कर दिए थे। इंद्रियों को, आंख को बंद कर दिए थे दर्शन से, कान को बंद कर दिए थे कथा से, जिह्वा को बंद कर दिए थे प्रसाद खा करके, मन को बंद कर दिए थे कृष्ण का चिंतन कर करके। इस प्रकार से अपूर्ण इंद्रियों को हम पूर्ण कर सकते हैं, और वह है संतोष। मनुष्य जन्म मिला हुआ है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। सुअर कुत्ते गधे वो इंद्रिय तृप्ति हमसे अच्छा ढंग से कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि खाने पीने सोने के लिए हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, कुत्ता किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता है, पेट भर लेता है अपना।
सुअर, हाथी, हाथी कितना बड़ा पेट है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके हाथी आया पेट भरने के लिए, भर लेता है। सो लेते हैं वे लोग अच्छी तरह से, बाल बच्चा पैदा कर लेते हैं और अपना रक्षा भी कर लेते हैं। ये चारों काम करने में हम लोग उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, पशु लोग हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं आहार निद्रा भय मैथुन करने में। हम लोग यदि एक्सपर्ट हैं तो एक काम में, और वह काम है माता जी बोलते पैसा कमाने में, पैसा कमाने में नहीं, वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। यदि हम एक्सपर्ट हैं तो एक काम में, और वह है भगवान का भजन करने में। बस यही काम हम अच्छा से कर सकते हैं, और कोई काम अच्छा से नहीं कर सकते हैं। भगवान का नाम ले रहा हो, कुत्ता नाम लेगा, गाय माता है नाम लेगी, कथा करेंगे बैठो गाय को बोलो सुनो कथा, सुनेगी गाय, नहीं सुनेगी, हम लोग सुन सकते हैं। तो हम लोग यदि एक्सपर्ट हैं तो केवल एक काम में, वी शुड वर्क इन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देन एरिया ऑफ कंसर्न। हम लोगों को अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करना चाहिए, ना कि एरिया ऑफ कंसर्न। ये खाना सोना बाल बच्चा पैदा करना एरिया ऑफ कंसर्न है, इसका व्यवस्था भगवान कर लिए हैं। हम लोग अपने को भगवान समझते हैं, इसलिए हम लोग दौड़ते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं डॉग्स आर रनिंग ऑन फोर लेग एंड वी आर रनिंग ऑन फोर व्हील्स, वी आर नॉट रनिंग। जब जन्म लिए थे उसी समय भगवान व्यवस्था कर दिए थे हम लोगों के भरण पोषण का। जब हम जन्म लिए थे तो हमारे माँ के स्तन में दूध कौन रखा था? पिताजी प्लानिंग किए थे, माँ ने प्लानिंग किया था, हमने प्लानिंग किया था। जो भगवान उस दिन हमारे लिए व्यवस्था कर सकते हैं कि आज नहीं कर सकते हैं, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे भगवान, विश्वास रखना चाहिए। तो यदि हम लोग एक्सपर्ट हैं तो केवल एक काम में, और वह है भगवान का भजन। बस तो कामस्य न इंद्रियो प्रीति जाओ जीवित जावत जीवस तत्व जिज्ञासा न अर्थे यस्य कर्म भी। मानव जन्म प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा करो, हु एम आई, मैं कौन हूं? यदि मेरा देह है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये मेरा देह है, तो मैं कौन हूं जो देह को ढो रहा हूं? नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आ रहा है, नहीं चाहते हुए मरना पड़ेगा। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त करना चाहिए। मानव जीवन इसके लिए है, हम में से सब लोग जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन क्या हम लोग थोड़ा भी परिश्रम करते हैं पता लगाने के लिए कि हम कैसे जी सकते हैं, हम क्यों मर रहे हैं, जन्म मृत्यु के को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके लिए मानव देह है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा करना, न कि इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा 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 उसी में लगे रहना। वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। एनीवे, ये अजितेंद्रिय का परिभाषा है। फिर भगवान बताए हैं कि कैसे धन के लिए बड़े बड़े राजा लोग आए। बैन गयादय, यहां पर कहा गया सप्तद्वीप अधिपतो नृपः, बैन गयादय अर्थे कामे गतानान्य तृष्णया इति श्रुतम। अरे हमने सुना है, मैं भले छोटा हूं लेकिन मैं सुना हूं कि बड़े बड़े राजा लोग आए, महाराज पृथु आए, महाराज बैन मतलब बेन के पुत्र पृथु आए, महाराज गया आए, और अन्य बहुत से राजा आए जो पृथ्वीपति थे, जैसे आप हैं महाराज बलि, वैसे पृथ्वीपति थे। अर्थे काम है गते हैं नान्यः, लेकिन मरते दम तक वे लोग अपने अतृप्त इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाए और सब कुछ यहीं छोड़ करके चले गए, साथ में कुछ भी नहीं गया अब तक से किसी के पास। इसीलिए है महाराज बलि कहते हैं यदृक्षोपन्न संतुष्टो वर्तते सुखम न असंतुष्ट त्रिभिर्लोके अजितात्मो उप अजितात्मनो प्रसादित।
इसलिए महाराज जो भी अपने कर्म के अनुसार भगवान की कृपा से जो कुछ रुखा सुखा मिल जाता है उसी को प्राप्त कर करके संतुष्टो वर्तते सुखम, उसी से व्यक्ति संतोष हो जाता है तो सबसे सुखी व्यक्ति है। कहते ना संतुषातम परमम सुखम, जो संतुष्टि व्यक्ति है वह सुखी व्यक्ति, वही संतुष्टो वर्तते सुखम, उसी व्यक्ति के पास सुख है जो संतोषी है। जो संतोषी नहीं है, जो अजितेंद्रिय है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। अब भगवान और मन एक एक श्लोक जो है एक घंटा दो घंटा तक के लिए है, लेकिन समय और प्रसंग को भी खत्म करना है, इसको देखते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि संसार में ये जन्म मृत्यु का कारण जो है, पुंसो अयम संसरो हेतु असंतोष्टो अर्थ काम, ये असंतोष जो है वही जन्म मृत्यु का कारण है। असंतोष ही जन्म मृत्यु का कारण है। संसृतो हेतु असंतोषो अर्थ कामयो, धन की कामना और असंतोष, ये दो वस्तुएं जो हैं वो संसृति यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण है। और इसके विपरीत भगवान की कृपा से जो भी मिल जाए, यह दृक्षो यो पन्ने संतोषो मुक्तये स्मृतः, संतोष जो है वो मुक्ति का साधन है। तो हाय हाय करना संसार में बंधे रहने का कारण है और संतोष मुक्ति का साधन है। इसीलिए और कहते हैं जो व्यक्ति संतोष से जीवन यापन करता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि ब्राह्मण संतोषी रहता है तो उसका ब्रह्म तेज बढ़ता है। और ब्राह्मण को संतोषी रहना चाहिए, तो मानो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं संतोषी रहना चाहिए, तीन पग से हमारा काम चल जाएगा। तस्मात तृण पादेन वृणे तदवर सभात एतावते सिद्धोयम बीत यावत प्रयोजनम। राधा गोविंद महाराज इस संबंध में एक बार कह रहे थे कि बलि महाराज से भगवान ने कहा कि बलि महाराज आप बात बड़ा बड़ा कर रहे हैं कि मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा, आए तुम इतना ही क्यों मांगा? अरे मैं जितना मांगा उतना तो पहले दे दो, जितना मांगा उतना पहले दे दो, फिर देखा जाएगा क्या जाएगा। जो मैं मांगा उसको देने के लिए तैयार नहीं हो अभी तक, लेकिन कहते मैं ये दे दूंगा, दे दूंगा, ये ब्लैंक चेक से क्या फायदा? तो इसीलिए इस श्लोक पर कहते हैं तस्मात त्रिणी पदान ने वह, इसलिए महाराज बहुत आप प्रवचन कर लिए, भाषण बहुत आप दे लिए, शांत रहिए, इसलिए आपको मैं बता दिया, आपके लिए भी, हमारे लिए तो मैं जानता हूं मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण के लिए जितना जरूरत उतना ही संतोषी बनना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए नहीं, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको सुखी रहना है। जिसको जो सुखी रहना चाहता है उसे संतोषी रहना पड़ेगा, नहीं तो कर भी क्या सकते हैं, जितना हमारा प्रारब्ध होगा उतना ही हमको मिलेगा ना। अब हाय हाय करे उसको ज्यादा कितने के मिल गया, हमको कम ही के मिला, करते रहे मरते रहो क्या फायदा? टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्या फायदा? अरे जितना मिला उतना संतोष रखो। तस्मात त्रिणी पदान ने वह, इसलिए महाराज बहुत कुछ बोल लिए, अब शांत रहिए, आप हम कृपा करके बोल तीन पग दीजिए, आप बतलाइए दे रहे हैं कि नहीं, नहीं तो बोल दीजिए कि नहीं दूंगा, ठीक है आप तो कुलोचित बात करने वाले हैं, बोल दीजिए नहीं दूंगा, हमारे पास तीन पग नहीं है। अरे कहने के लिए बड़ा चीज है, तीन पग चाहिए। वृण तद बरदर सभात, लेकिन मैं जानता हूं आप देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे रिक्वेस्ट को आप ठुकराएंगे नहीं,
एतावतैव सिद्धोयम् वित्त यावत् प्रयोजनम्। इसलिए सभी व्यक्ति को इससे शिक्षा लेनी चाहिए, सबको जानना चाहिए कि हमें उतना ही धन रखना चाहिए जितना से अपना काम चल जाए। कहते हैं सिद्धोयम, जिसने कहते हैं हमारा एतावते न सिद्धोयम, इतना से अपना काम चल जाएगा। वित्त यावत् प्रयोजनम्, इससे ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे कल 3 पग चाहिए, आप कृपा करके मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए। तो जब इतना कहे तो बलि महाराज कहे ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है, तुम अब डांट गए हो कि मुझे 3 पग ही चाहिए, हट कर रहे हो। देखिए कहा जाता है कि बाल हट और स्त्री हट, दो हट ऐसा होता है कि जब तक से आप पूरा नहीं करोगे, माता जी लोग जानती हैं, तब तक से घर में शांति नहीं रहेगी। यदि स्त्री को कुछ चाहिए तो दे दो, शांति खरीद लो, ना मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। छोटा बच्चा है, उसको कुछ चाहिए दे दो, शांत रहने दो, नहीं तो पूरे घर को सिर पर ले लेगा वो, सबको। एक सत्य घटना है, हमारे एक मित्र और भक्त हैं कमल चौधरी, उनके बेटे को एक मोबाइल फोन चाहिए था। उसके पास पहले मोबाइल फोन था, लेकिन अभी उसके मित्र के पास एक नया नोकिया का मोबाइल फोन था। तो अब प्रेस्टीज इश्यू हो गया कि हमारे मित्र के पास अच्छा है, हमारे पास नहीं है। तो ये जान करके अपना मोबाइल फोन समुद्र में डाल दिया और बाप से कहा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया, मुझे नया मोबाइल चाहिए, और भी वह चाहिए। अब कमल नहीं दे रहे थे, अब वो परेशान करना शुरू किया, क्यों नहीं दे रहे थे? कह रहे प्रभु जी बहुत कॉस्टली मोबाइल है, 35,000 रुपये का मोबाइल मांग रहा है, तो नहीं दे रहे थे। उसने बहुत सुंदर बहुत बड़ा टीवी था, मारकर टीवी तोड़ दिया, और कुछ सामान था सब तोड़ दिया। मैं कहा कमल ये जितना सामान ये तोड़ा है ये कितने रुपए का होगा, सब जोड़ो तो। कहा प्रभु जी 1,50,000 रुपये का सामान तोड़ दिया। तो मैं कहा बुद्धिमानी किसमें है, 35,000 का मोबाइल तो देने में कि 1,50,000 रुपये का सामान गंवाने में? आप दे दिए होते तो ये टूटता नहीं, कम से कम ये बाल हट है ना, और वो खुश नहीं होगा जब तक से आप मोबाइल नहीं दोगे। तो ये बाल हट और स्त्री हट, दो हट ऐसा होता है, तोबा तोबा, कान पकड़ लो, दे दो, उन लोग खत्म करो, शांति रहो। तो बलि महाराज समझ गए कि बाल हट है, भैया दे दो, ये बच्चा है, अब इसको चाहिए 3 पग बस, अब कितना ही मैं समझा लिया इसको, ये उल्टा हमको उपदेश दे रहा है, दे दो खत्म करो। इति उक्त सहसनम आह वाक्षात प्रतिगृहताम वामनाय महीदातुम जग्रहाम जलभाजनम। हंसते हुए प्रसन्न मन से, देखिए जब दान दिया जाता है तो दान में प्रसन्नता होनी चाहिए। आप लोग पेपर पेन लाए हैं तो लिख लीजिए, दान एक बार इलाहाबाद में प्रयाग में साधु महात्मा लोग थे, वहाँ पर एक राजा आए, वे नारद जी से मिले और नारद जी से वे दान तत्व समझना चाहते थे कि दान तत्व क्या है बतलाइए। तो नारद जी कहते हैं द्विहेतु षडधिष्ठानम षडंगम च द्विपाकजित चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दान उच्यते। दान में दो हेतु होते हैं, एक है श्रद्धा और एक है शक्ति। श्रद्धा और शक्ति होनी चाहिए। कितने लोग हैं जिनके पास श्रद्धा है देने के लिए लेकिन धन नहीं है? कितने लोग हैं यहां खूब धन है लेकिन श्रद्धा नहीं है? तो दान नहीं हो सकता है। दान में ये दो चीज होना चाहिए, श्रद्धा और शक्ति, द्विहेतु, दो कारण है दान देने का। सदधिष्ठानम, और 6 प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष हर्ष भय मुक्ति। ये दान के छह प्रयोजन है। छह चीज के लिए दान देना चाहिए, धर्म यानी भक्ति, अर्थ धन देने से, दान देने से पैसा कमी नहीं होता है बल्कि बढ़ता है, अर्थ, काम संतोष प्राप्त होता है, इंद्रिय तृप्ति मतलब संतोष, दान देने से मन बड़ा संतुष्ट रहता है देने से, और हर्ष मोक्ष और मुक्ति का भी साधन है दान देना, और हर्ष नहीं तो दान, अपने पास पैसा रहता है तो बहुत टेंशन रहता है, पैसा खत्म रहता है तो मोक्ष रहता है, मुक्ति और शांति, इस बार जितना पैसा है उतना अशांति है, रात को नींद तक नहीं आती है। हर्ष वह व्यक्ति हमेशा प्रफुल्लित रहता है, और अभयम वह निर्भय रहता है, कोई भय नहीं होता है। ये छह प्रयोजन है, छह प्रयोजन के लिए हमें दान देना चाहिए। षडंगम छह अंग हैं दान के, दाता देने वाला होना चाहिए, प्रतिगृहिता लेने वाला होना चाहिए, शुद्धि दान में शुद्धि होना चाहिए समय के अनुसार, यानी मकर संक्रांति को दान दिया जाए, जन्माष्टमी को दान दिया जाए, पूर्णिमा को दान दिया जाए, एकादशी को दान दिया जाए, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दान दिया जाए, इत्यादि इत्यादि, ये शुद्धि सब है। धर्म जुत देय वस्तु, वही वस्तु जो देने योग्य हो, अदेय वस्तु नहीं देना चाहिए। प्रायः लोग अदेय वस्तु देते हैं, कहते हैं महाराज वृंदावन प्रभु हमारे घर पर आ जाइएगा, एक पुराना सोफा पड़ा हुआ है मैं मंदिर को देना चाहता हूँ, घर में नया सोफा लाना चाहता हूँ, ऐसा लोग करते हैं यहाँ पर है? बहुत करते हैं ना इंडिया में, इंडिया में आजकल बॉम्बे में करना शुरू कर दिए, कहते हैं एक पुराना गाड़ी है मैं सोचा मंदिर को दान दे दूँ क्योंकि नया गाड़ी खरीदना है, ये दान नहीं है। अदेय वस्तु जो हमारे यूज के लिए मंदिर में दे दो, तो ऐसा दान नहीं। धर्मजुग देय वस्तु, वह वस्तु देना चाहिए दान जो देने योग हो, और देश और काल ये छह अंग है। द्विपाक जुत, और इसके दो फल हैं, इहलोक और परलोक। दान देने से इस लोक में भी नाम नेम फेम ग्लोरी रहे, भाई बहुत बड़ा दानी आदमी है, हैं ख्याति होगी, संतुष्टि रहेगी, और परलोक अपना रिजर्व कर रहे हैं एडवांस बुकिंग, जैसे लोग फ्लैट फ्लैट बुकिंग करते हैं ना, तो गोलोक धाम में भगवान के धाम में अपना निवास स्थान बुकिंग करते हैं दान के द्वारा। उसके बाद दीपाक जुत चतुष्प्रकारम, ये चार प्रकार के दान होते हैं, जैसे दीपाक जुत चतुष्प्रकारम, एक समाज की सेवा के लिए त्रिक नित्य दान या भगवान के सेवा के लिए, काम्य कामना के पूर्ति के लिए, नैमितिक किसी निमित्त जैसे संक्रांति को दान दिया गया इत्यादि इत्यादि, और त्रिविधम सत्गुणी रजोगुणी और तमोगुणी, तीन प्रकार का उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, और त्रिनाशम, तीन ऐसे वस्तुएं हैं जो देने वाला को नष्ट कर देता है, वह है दान देकर पछताना, दान रे मैं उतना दे दिया उसको क्यों दे दिया, वो तो हिप्नोटाइज कर दिया मुझको, तो दान देकर के पछताने से वो दान का फल खत्म होता है, दान देकर पछताना, कुपात्र को जान देना, और अश्रद्धा पूर्वक पिंड छुड़ाने के लिए चलो जाने पिंड छुड़ाने के लिए, ये तीन जो हैं नाश के कारण है। तो जब भी दान दें तो बिल्कुल प्रसन्नचित होकर के खुशी मन से दें। बलि महाराज वहीं पर कहते हैं हसन्नह हसन अह, हंसते हुए आनंद से, दान देने में आनंद होता है, देने में आनंद होता है, इधर खिलाते हैं ना, एक और रोटी ले लीजिए, थोड़ा और सब्जी ले लीजिए, खाने वाला मर रहा है, और वृंदावन प्रभु कहेंगे प्रभु जी एक और रोटी ले लीजिए ना, खाने वाला यहां तक भर गया, खिलाने वाला थोड़ा और ले लीजिए। तो आनंद होना चाहिए दान देने में। वांछा तो प्रतिगृहा, तो हंसते हुए बलि महाराज अब देने के लिए, वामनाय महिम दातु जग्राम जल भाजनम, अब जल उठाए संकल्प लेने के लिए, दान देने के लिए। अब इधर शुक्राचार्य जो बलि महाराज के गुरु जी थे, वो सब तमाशा देख रहे थे कि बलि और बामन के बीच में क्या क्या हो रहा था, सब देख रहे थे। अब सब देख करके उनसे रहा नहीं गया, तो भी दांत पीसते हुए गुस्सा में कहते हैं, श्री शुक्र उवाच एसम वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यप आदितो जातो देवानाम कार्य साधक। मैं कहा था ना कि वैरोचन शब्द दो बार आया हुआ है, एक बार भगवान वामन देव कहते थे उनको आनंद के साथ में, है अच्छा काम किया इसलिए, अब शुक्राचार्य समझते हैं कि सबसे खराब काम कर दिया, इसीलिए एक तरह से गाली देते हैं, किसी के बाप का नाम लेकर करे तू उसका बेटा है, चाहे उसका यू नो उसके बाप का नाम नहीं, गाली एक तरह से होता है। तो कहते हैं ऐसा वैरोचने, अरे विरोचन का बेटा, तू नहीं जानता है क्या कर रहा है, तू जानता है कौन है, साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, ये साक्षात विष्णु है, ये अव्यय है, तुम कहां से देगा तीन पग। और उतना ही नहीं, एक कश्यप और अदिति का बेटा बन करके आया है, ये दान अपने लिए नहीं मांग रहा है, देवानाम कार्य साधक, तुम्हारे शत्रु जो देवता लोग हैं ना, ये ले करके देवताओं को दे देगा। तो भड़का रहे हैं और खूब वहां पर भड़काने का प्रयास किए, खूब कहे, और कहने के बाद कहते हैं कि तू तीन पग, मानो जब गुस्सा में थे तो मानो बलि महाराज कह रहे हैं गुरुजी गुस्सा में क्यों है, अरे छोटा बच्चा है, तीन पग जमीन मांगो से अपने पास बहुत बड़ा हुआ है, तीन पग कौन बड़ा बात है, आपके खाने पीने का अच्छा व्यवस्था है, चिंता मत करो, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो। अरे मूर्ख, ये विष्णु है, अव्यय है, तो तीन पग का बात कह रहा है, अरे दो पग में ही सब कुछ है नाप लेगा, तीसरा तू कहां से देगा मूर्ख, कहीं का बड़ा बड़ा बात कर रहा है, तीसरा पग के लिए कहां से देगा, और तू नहीं देगा तो तू नरक का गामी होगा, तू नरक में जाएगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। निष्ठामते नरके मन में या प्रदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य यो निशम प्रतिपादयितुम भवान, तुम नरक के गामी होगे, तुम नरक में जाओगे, क्योंकि तुम झूठ बोले हो। फिर भी बलि महाराज टस से मस नहीं हुए, कुछ नहीं, बस सुन रहे थे। तब अब थोड़ा शांत पड़ गए, क्योंकि आखिर शुक्राचार्य जन्म दिया उनको, बलि महाराज को दूसरा जन्म दिए थे, सब कुछ थे, लेकिन आखिर पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कितना तक गुस्सा कर सकते थे। तो अब कहते हैं कि ठीक, दान देना कोई खराब काम नहीं है, दान सबको देना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या वैसे ही क्यों ना हो, सबको दान देना चाहिए। भगवान भी गीता में कहते हैं कि दानम तप दानम यज्ञ तप शौचम पावनानी मनीषय, साधु महात्माओं को पवित्र करता है। तो कहते हैं दान देना चाहिए, दान यज्ञ तप कर्म ये सब संसार में जो रहते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन शास्त्र के अनुसार धर्मा धन जो है उसको पांच भाग में बांटना चाहिए, तुम तो सब कुछ इसी को देना चाहते हो। पांच भाग में धर्माय, धर्म के लिए दान दो। जससे, नेम फेम ग्लोरीज के लिए धर्म दो। अर्थाय, धर्म वृद्धि के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। कामाय, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने लिए। स्वजनाय च, और अपने स्वजनों के लिए। जो भी पैसा है उसको पांच भाग में बांट देना चाहिए। एक सेक्शन धर्माय, धर्म के काम के लिए। दूसरा सेक्शन नेम फेम ग्लोरीज के लिए, जैसे जस बढ़ाने के लिए। तीसरा अपना धन बढ़ाने के लिए अर्थाय। चौथा कमाय, इंद्रिय तृप्ति के लिए। और पांचवा स्वजनाय च, स्वजनों के लिए। पंचधा विभजन वित्त इहाम उत्र च मोदते। शास्त्र इसका अनुमोदन करता है कि पांच भाग में धन को बांटना चाहिए। लेकिन तू तो ऐसा लगा है कि सब कुछ दे रहा है। अरे तू पेड़ काट देगा, पेड़ से फल होता है और फल लोगों को संतुष्ट करता है। तुम्हारा जितना भी है ये तुम्हारे बाप का धन नहीं है, ये तुमको मिला हुआ है बहुत काम करने के लिए, और तुम इसके जड़ को ही काट रहे हो। जब जड़ काट डालोगे तो धन नहीं रहेगा, फिर कहां से जस में प्राप्त होगा, फिर कहां से दान और दोगे? एक ही आदमी को थोड़ा इतना देना चाहिए। तुम पेड़ को जड़ से उखाड़ रहे हो, इसलिए कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। एनीवे, इस प्रकार से बहुत समझाने का प्रयास किए शुक्राचार्य जी, लेकिन जब बलि महाराज नहीं समझ पाए, टस मस सिर नहीं हिला, एकदम फिक्स थे, जल हाथ में लेकर के बिल्कुल तैयार थे अब देने के लिए। गुरु जी बोल रहे थे इसलिए बीच में देना नहीं चाहते थे, गुरु जी के सम्मान के चलते हाथ में जल लेकर के, जल का पात्र लेकर के रेडी थी देने के लिए। तो कहे कि देखो मैं समझ सकता हूँ, शुक्राचार्य देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शर्म लग रही है कि भाई अब तो मैं बोल दिया हूँ तीन पग जमीन देने के लिए, और गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान है और ये दो पग में सब कुछ नाप लेगा, तीसरा पग कहाँ से दोगे इत्यादि इत्यादि। तो तू वचन दे चुके हो, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कुछ विधान बताया गया है, कुछ ऐसे ऐसे स्थान है जहां पर यदि झूठ भी बोलना पड़ता है तो झूठ झूठ नहीं कहलाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनना है? शास्त्र उसका अनुमोदन करता है कि कौन कौन ऐसे स्थान है जहां पर झूठ बोल सकते हैं, लाइसेंस देता है शास्त्र है? स्त्रीसु नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम न अनृतम स्यान जुगुप्सितम। तो कहते हैं कि इन जगहों पर असत्य की भाषण कभी निंदनीय नहीं माना जाता है, ये झूठ नहीं होता है। कौन कौन स्थान है? स्त्री सु, श्याम कुंड प्रभु ध्यान से लीजिए, स्त्री सु यानी पति पत्नी में जब बात हो रहा हो तो पति कह दिया चलो भाई इस बार हम लोग वृंदावन जाएंगे चाहे इंडिया जाएंगे, ठीक है, और पत्नी सही में विश्वास कर लिया कि पति बोल दिया है इंडिया जाने के लिए। तो और यदि मान लो पति नहीं लेकर इंडिया गया तो पत्नी नहीं कह सकती अरे तू तो झूठे नंबर एक हो, तू बोला कि इंडिया ले जाऊंगा नहीं ले जा रहे हो। तो पति पत्नी में ऐसे बात होता है, पति ने कह दिया ठीक है इस बार तो थोड़ा परिस्थिति खराब है, नेक्स्ट टाइम जन्माष्टमी में तुझे सोना हीरा का एक सेट दिला दूंगा है? और मान लो पति नहीं दिला पाया तो उसे झूठ नहीं मानना चाहिए। स्त्री सु पति पत्नी के बीच में बात किया गया, झूठ नहीं, लेकिन पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति ना होना चाहिए। समझ रहे कहने का मतलब ना, पति पत्नी के बीच में ही हो जाए वो झूठ नहीं होता है। नरम विवाह है, विवाह से पहले का जो समय होता है उसे नरम विवाह कहते हैं, और विवाह के बाद गरम विवाह होता है। नरम विवाह है,
क्या सुंदर शब्द है, नर्म विवाह च, विवाह से पहले। पता नहीं आप लोगों को एक्सपीरियंस है कि नहीं, मुझे एक्सपीरियंस बिहार में बहुत होता है। विवाह कहा जाता है कि जो किसी का विवाह काट देता है, जो कटुआ होता है विवाह काटने वाला, सबसे बड़ा पापी होता है। लोग गाली देते हैं उस व्यक्ति को, कोई देखना नहीं चाहता है उस व्यक्ति को। बिहार में क्या करते हैं, यदि ऐसा भी, आजकल तो नहीं, 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि यदि किसी के लड़की का विवाह करना है, विवाह होना बहुत जरूरी है, लड़की का, लड़का का नहीं, लड़की का, इसलिए वो दूसरे के बेटी को ला करके दिखा देंगे कि ये अपनी बेटी है, दूसरे के बेटी को दिखा कर विवाह करा देते थे, हैं? उनकी बेटी नहीं, दूसरे की बेटी को, अपनी बेटी काली होगी हो सकता है, या कुछ अंग भंग होगा, दूसरे की बेटी को दिखाकर, तो नरम विवाह था ये, झूठ बोला हुआ झूठ बोल चलता है। उसके बाद अपने पास बैल नहीं है तो गांव वालों का 2-4 बैल ला करके अपने यहां बांध देते थे कि अपने बैल हैं, वो खेत वगैरह ऐसा अपना ही खेत है, तो अपना ही खेत है, अपना नहीं है, सो झूठ है। लड़का मैट्रिक फेल है, मैट्रिक समझते हैं ना, लड़का मैट्रिक फेल है, कहेंगे वो बीएससी पास कर गया है, तो ये झूठ झूठ नहीं होता है। शास्त्र कहता नरम विवाह च, विवाह से पहले बोला गया झूठ जो होता है, आजकल उतना नहीं, कम बोलते हैं। तिलक, तिलक के समय कहते हैं विवाह हो जाने दीजिए, बाद में और दे दूंगा। आजकल तिलक प्रथा थोड़ा, आजकल वो भी कम होते जा रहा है, लेकिन पहले हम मोटरसाइकिल जाए कोई बात नहीं, शादी के बाद दे दूंगा, शादी के बाद कोई दिन नहीं देता है कुछ भी, हो गया पहले था उस बोल दिया है। तो नरम विवाह च वृत्ति अर्थे, वृत्ति अर्थे मतलब रोटी कपड़ा मकान का, यानी बिजनेस में, बिजनेस में प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यापारी सत्य नहीं बोलता है। लोग कहते हैं स्वामी जी आपके लिए एक पैसा मुनाफा नहीं करूंगा, फिर भी 50% ले रहा है, नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा। 1 रुपये का सामान 2 रुपये में बेचो, ये सिद्धांत है, नियम है व्यापार का, व्यापार नहीं चलेगा। अब 1 रुपये का सामान 100 में मत बेचो, दाल में नमक डालो, नमक में दाल मत डालो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो झूठ उतना ही बोले जो काम चल सके। तो वृत्ति अर्थे व्यापार में बोला गया झूठ। प्राण संकटे, जब प्राण संकट में हो और उस समय बोला गया झूठ, झूठ नहीं माना जाता है। गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, गाय और ब्राह्मण और चाहे भक्ति संस्कृति का रक्षा के लिए, हिंसायाम शत्रुओं के कारण हत्या किए जाने वाले व्यक्ति के लिए, ये सब जो झूठ हैं, न अनृतम, ये सब झूठ नहीं कहलाते हैं। स्या जुगुप्सितम, ऐसा शास्त्रों में अनुमोदित किया। तो इसमें से कौन आ रहा है बलि महाराज पर, कौन लागू हो रहा है, याद रखिए आप लोग, स्त्री सु पति पत्नी के बीच में वो लागू नहीं होता है। नरम विवाह च, बलि महाराज का विवाह हो चुका है उनका नेता है। वृत्ति अर्थ है व्यापार के लिए, ये भी नहीं लग रहा है। प्राण संकटे, ये लग रहा है, प्राण संकट में है, सब खत्म हो जाएगा महाराज दे दोगे तो। तो इस प्रकार ऐसे स्थानों पर बोला गया जो झूठ है वह झूठ नहीं कहलाता है। तो महाराज कह दो कि हमारे पास उतना नहीं है, और बात सही है, ये झूठ भी नहीं है। आप कह दो कि मेरे पास 3 पग नहीं है, मैं क्या करूं, वो आपके पग से नहीं, मैं नापूंगा, मैं नाप कर दूंगा, ऐसे कुछ कह दो, तब आपका प्राण बच सकता है, नहीं तो आप गए काम से। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य अब कह करके अब चुप हो गए। उसके बाद बलि महाराज क्या बात कहे हैं वो कथा कल होगी, बहुत सुंदर बात बलि महाराज कुलोचित कहे हैं जसस्कर। और 3 बात कहा था मैं, हैं, जो बात हम कहें तो कैसा होना चाहिए, कुलोचित होना चाहिए, हैं, कुल के मर्यादा को देखते हुए जसस्कर होना चाहिए, हैं, जो कि हमारे कृति को बढ़ाए, और 3रा था सुनृतम धर्मयुक्त,
सुनतम धर्मजुत, धर्मवत हो या सुनने में जो अच्छा लगे ऐसा बात करना चाहिए। तो वो बातें हम कल बलि महाराज का प्रवचन सुनेंगे। तो अब तक से हम लोग सुन लिए बामन देव का प्रवचन, बलि महाराज का थोड़ा सा प्रवचन सुने, शुक्राचार्य का सुन लिए, ठीक है ना। तो मोटा मोटी पता चल गया क्या बात था आज। यदि किसी कहा जाए कि समरी कीजिए आज के प्रवचन का, तो समरी मैं ही करता हूं, आप लोग सुन लीजिए, समय कम है। कल हुआ था कि बलि महाराज ब्लैंक चेक दे दिए थे कि ठीक है जो चाहिए तो हम दूंगा। अब भगवान बामन देव उनके इस वचन का अनुमोदन किए हैं और उसका उदाहरण दिए हैं उनके पूरे खानदान का, कैसे सब लोग दान देने में रहे। और बलि महाराज का भी गुणगान किए कि आप भी देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप, मैं जानता हूं आप सब कुछ दे सकते हैं, आप सच में समर्थ हैं, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं सही में तो मुझे आप 3 पग जमीन दीजिए जिसको मैं अपने पैर से नापूंगा। इतना सुन करके बलि महाराज को, और वो थोड़ा बताए कि संतोष का मतलब बताया, एक संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है, सुखी रहने का तरीका है कि उतना ही ग्रहण करें जितना की जरूरत हो, नहीं तो ज्यादा रखना, प्रतिग्रहण करना, अतिक्रमण करना उचित नहीं है, वो पाप है। उसके बाद बलि महाराज को गुस्सा आ गया और कहे तो छोटा बालक है, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, तुम नहीं जानता है किसमें तुम्हारा हित है किसमें अनहित है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस और दे रहा हूं, यदि चाहते हो तो तुम इतना जरूर मांग लो जिससे फिर दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मेरे पास जो एक बार मांग लेता है फिर उससे मांगने की जरूरत नहीं रहती है। इस प्रकार से बलि महाराज कहे कि ये तुम मांग रहे तो मैं तुम्हें को एक द्वीप दे दिया होता। और उसके बाद में पुनः बामन भगवान संतोष के विषय में बलि महाराज को उपदेश दिए हैं और अब तैयार हो गए थे देने के लिए। उसी समय गुरुजी आ टपके और कहे कि तुम मूर्ख है, तू जानता नहीं तो क्या कर रहा है, यह विष्णु है, यह अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आया हुआ है, ये मांग रहा है अपने लिए नहीं बल्कि देवानाम कार्य साधनम, देवताओं का मनोरथ पूरा करने के लिए लेकर के देवताओं को दे देगा, तुम यह सब दानी बनना बंद करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, और दान देने के विरुद्ध में मैं नहीं हूं, तुम दे सकते हो लेकिन शास्त्र कहता है कि धन को 5 भागों में बांट करके रखना चाहिए, और जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से होगा, तुम वृक्ष को ही काटने का प्रयास कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम असमंजस में है कि मैं वचन दे चुका हूँ, वचन झूठा न होने पावे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि किन किन स्थानों पर बोला गया है झूठ झूठ नहीं कहलाता है, उसमें से एक है प्राण संकट, आज सब लोगों का प्राण संकट में है, इसलिए तुम्हारा बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाएगा। तो ये संक्षिप्त में आज के कथानक का सारांश हुआ और कल से बलि महाराज का प्रवचन हम लोग सुनेंगे। तो बेसिकली कल बलि महाराज सरेंडर करेंगे सब कुछ, कल 2 सीटिंग है ना, है? तो कल बलि महाराज सरेंडर देने के लिए तैयार हो जाएंगे और भगवान 2 पग में सब कुछ नाप लेंगे, 3रे पग के लिए कुछ नहीं रहेगा तो उनको गरुण देव बासुकी के द्वारा बनाएंगे, उसको बंदी बनाएंगे, वहाँ प्रहलाद महाराज का ब्रह्मा जी का उद्गार है वो सुनेंगे। तो कल यहीं तक कथा होगी दोनों मिला करके, और परसों भगवान बलि महाराज का प्रशंसा करेंगे किस प्रकार से तुम जीता और मैं हारा, तू अपना सत्य वचन कभी नहीं छोड़ा लेकिन मैं बदलते गया, पहले विष्णु के रूप में आया, बामन रूप धारण किया, बामन रूप में 3 पग मांग करके सब कुछ कर लिया, मैं सब कुछ छद्म भाव से लिया किया लेकिन तू अपना वचन नहीं तोड़ा, इसलिए बलि महाराज को वे सुतल रोक दिए और इंद्र को उसका राज दिए और बाद में बलि महाराज के जो पुरोहित थे उनसे कहे कि आप जो यज्ञ खंडित है उसको संपन्न करा दीजिए, क्योंकि इंद्र बलि बाद में इंद्र बनने वाले हैं। तो बलि महाराज इस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा किए भगवान के आदेशानुसार, और भगवान प्रहलाद जी को कहे कि आप भी चले जाइए इन लोगों के साथ में सुतल लोक में, वहीं पर रहिएगा। सुतल लोक का व्याख्या किया गया, सुतल लोक कैसा है, और इस प्रकार से बलि महाराज का प्रसंग समाप्त होता है। तो 6 घंटा का और प्रसंग है। कल कै बजे से? 3:30 बजे से, 3 से 5 और 6 से 8। किसी कोई प्रश्न है? अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं हमसे किया है। हाँ, क्या आपको बोले थे कभी कुछ कराने के लिए, इंडिया ले जाने के लिए? कुछ नहीं, तो आप तो इंडिया चली जाती वैसे भी। हाँ, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? देखो, यदि आप कनेक्टेड हो तो आप डायरेक्टली दान कर सकते हो, लेकिन यदि कनेक्टेड ना हो तो आप तो किसी को दोगे जो कि मंदिर मिला करके दे, जो रसीद फाड़े, किसी में गली में किसी को तो नहीं दोगे ना, अथराइज व्यक्ति दोगे ना। तो शास्त्र कहता है जिसको आप दान दे रहे हो उसको दक्षिणा जरूर देना। इस शास्त्र कहता है कि दान के साथ में दक्षिणा होना चाहिए, जो भी दान दो। या यदि आप यहां आकर दे रहे तो कोई तकलीफ नहीं है कि कोई आपके घर पर आया है, कोई वैष्णव आया है और मंदिर के लिए आप चेक दे रहे हो, तो उस वैष्णव को जो लेकर के आ रहा है पोस्टमैन, उसका भी फीस देना चाहिए। अमेरिकन सब लोग जानते हैं आवर वाइज होता है सब कुछ है। तो शास्त्र कहता है कि दान का तब मतलब होता है जब दक्षिणा दिया जाए साथ में। और मैं उदाहरण दिया था विश्वामित्र जी का और हरिश्चंद्र जी का। हरिश्चंद्र जी सब कुछ विश्वामित्र जी को अर्पण कर दिए थे, लेकिन दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं था, तो अपने शरीर को बेचना पड़ा, अपने पत्नी को बेचना पड़ा, दक्षिणा चुकाए। दान विष्णु को और दक्षिणा वैष्णव को, जो विष्णु का के लिए लाकर ब्राह्मणों को जो लाता है उसके लिए, तो आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि वो ला करके अर्पण करेगा, आप तो अर्पण नहीं कर रहे हो, वो ला कर अर्पण करेगा, आपको क्या मिलेगा? तो दक्षिणा की तरह उसका फल आपको ट्रांसफर होता है। अच्छा विधि है। और कोई प्रश्न? पहले दान देना चाहिए, नहीं तो दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को लोही बना दोगे आप। और कोई प्रश्न? सब लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? दोनों माता जी एक ही प्रकार का प्रश्न किए, दान दक्षिणा वाला। यानी शास्त्र कहता है, शास्त्र में सब वर्णन किया गया है। नहीं, ऐसे हम लोगों के प्रणाम करने की पद्धति है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे में भगवान की तरफ, बड़े की तरफ पैर नहीं रखना चाहिए।